ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहम् पदकमलम् श्रीगुरु न वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे राधे मेरी स्वामिनी मेरा धे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सोते रो जय राधा माधव की जय बिहारी,
जय राधा माधव
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा
यशोदानन्दन
व्रज जन रञ्जन,
यशोदानन्दन
व्रज जन रञ्जन, यमुनाति रावण जानी,
यमुनाति रावण
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव
Yashodanandana
राधा माधव
नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यास
ततो जय मुदीरये
ततोर्जय मुदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नयष्टकी श्रीमद्भागवतम स्कंद छे अध्याय एक श्लोक क्रमांक एक। सब लोग अपनी किताब खोलिए। आज द्वितीय पेज। अथ प्रथम अध्याय श्रीराज उवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्रुति प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलीन प्रकृते गुणसर्ग पुनः
अधर्म लक्षणा नाना
नरकाशानुवर्णिता मन्वन्तरस्य व्याख्यात आद्य स्वायं भुवो यत प्रियव्रतोत्तान्पादो वंशस्थचरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्री
अनुध्यान वनस्पति
धरामंडल संस्थानम्
भागलक्षण मानत
ज्योतिषा विवराणाम च यथेदम सृज द्विभो अधुनेह महाभाग यथेव नरकानर नानो प्रयातनात्रेय
तन्मे व्याख्यातुमर्हसि
शिशुकुवाच
न चेदिहैवा पचितिं यतामहस
कृतस्य कुर्यान्मनोक्तिपाणिभिः
ध्रुवं सवे प्रेत्य नरकानुपेति
ये कीर्तितामे भवतस्मिग्मयातना
तस्मात् पुरेवा शिव पाप निष्कृतो
यतेत मृत्यो रवि पर
प्रपद्यतात्मना
यतेत मृत्योरविद्गदयात्मना
दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा
दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा
विषक चिकित्सेन रुजां निदान्वी
विषक चिकित्से तरुजाम निदावनित
श्रीराजो वाच
दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम
जानन्यप्यात्मनोहितम करोति भूय विवश प्रायश्चित्तो अथो कथम कश्चित् निवर्तते भद्रा कश्चित् चरति ततः पुनः प्रायश्चित्तम् अथो पार्थ
मन्ये कुञ्जरशोचवत्
शिशुकुवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न हात्यन्ति कैष्यते अविद्वद्धिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्
यच्चित्तं विमर्शनम्
नाश्नथ पथ्यमेवान्नम् व्याधयो अभिभवन्ति
एवं नियम क्रीडाजन्
शनैः क्षेमाय कल्पते
तपसा ब्रह्मचर्येण
शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशोचाभ्याम्
यमेन नियमेन च
देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपत्यङ्गं महदपि वेणुगुल्ममिवानल निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्विकृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युच्ये वदन्तं मुहु ्यन्तं द्रुतमाशु निर्जरचये सिञ्चन्त भूर्विन्तलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्री गौरचन्द्रं नमः वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल कदापि वसन चल खेलनोथ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभो दिशेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिष्ठतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया हपुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपया मि गुरु मुनीना जलाशये का लियमर्दनाय यदा कदम्बा दपतन् मुरारि गोपांगनाश रुरेत्य गोपा गोविंद दामो धर्माधवेति अक्रूरयाने यदुवंशनाथम् संगच्छमानं मथुरां निरीश ऊचोर्वियोगात् किल गोपबाला गोविंद दामो धर्म शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामो धर्माधवेति जिहवे रसके मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां पदमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामो धर्माधवेति आद्यन्ति कव्या धिहरं जनाना चिकित्सिकं वे दविदो वदन्ति संसारताप तयनाशबीजम् गोविन्द दामोदरमाधवे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवे प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताज सति स्मृति हृदि स्वलक्षण दुर्बोध किलास्यत समे ऋषिणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महत भी यैमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमोश पुरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो अशोडशात्मक सोलङ्क श्रीष्ट भगवान्
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय इस भागवत सप्ताह में, जिनका नाम हमारे भक्तों ने द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ रखा है, इस कथा में आप सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं। आज इस कथा का तृतीय दिवस है। समस्त वेद और शास्त्र का सार, समस्त वेद और शास्त्र का पका हुआ फल जो अमृतमय है, ऐसी अमृतमय कथा का हम यहां पर श्रवण कर रहे हैं। इस कथा श्रवण करने के पीछे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। उनकी कृपा और अनुकंपा से हम हमारे अपने क्षेत्र में अपनी जगह पर यहां पर भागवत श्रवण कर रहे हैं। देवताओं को भी दुर्लभ यह भागवत आज हमें प्राप्त हुआ है। यह भागवत इस संसार में सब लोग सुनना पसंद करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भागवत और भगवान श्री कृष्ण की कथा को न सुने। प्रत्येक लोग, सभी मनुष्य भगवत कथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहता है, क्योंकि भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। यदि कोई भागवत की कथा सुने तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। हम सबको एक रोग लगा है और उस रोग का नाम है भवरोग। भवरोग मिटाने के लिए यह भागवत औषधि के समान है और कृष्ण से प्रेम करने के लिए यह भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामात कौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विना पशुगनात। भागवत के परम श्रोता महाराज परीक्षित इस बात को कहते हैं कि संसार में कौन है जो भागवत सुनना नहीं चाहेगा। संसार के सभी जीव, सभी प्रकार के लोग भागवत सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि यह भागवत सभी लोगों की इच्छा को पूर्ण करने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है। श्रीमद् भागवत की उपमा वेदों में कल्प वृक्ष के समान दी है। आप सब लोग ने इसका नाम सुना होगा, कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उस रत्नों में से एक रत्न है कल्प वृक्ष। जैसे ही समुद्र मंथन से यह कल्प वृक्ष निकला तो इस कल्प वृक्ष को इंद्र ने ले लिया और इंद्र इस कल्प वृक्ष को लेकर स्वर्ग में लगा दिए। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े रहकर आप कल्पना करो, केवल विचार करो, वह चीज आपके सामने उपस्थित हो जाती है। साधारण वृक्ष नहीं है। जो भी इच्छा करो वह सभी इच्छा उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर पूर्ण होती है। यदि आप धन की इच्छा करो तो धन प्रकट हो जाए, यदि आप गाड़ी की इच्छा करो तो गाड़ी प्रकट हो जाए। जो भी मनोकामना पूर्ण करने वाला यह कल्प वृक्ष है। प्राय सब लोग सोचते हैं कि हमारे घर पर भी एक ऐसा मिल जाता तो रोज पतिदेव को परेशान न करना पड़ता। प्राय माताएं कहती हमारे लिए बनारस की साड़ी लेकर आओ, ये गहना लेकर आओ, परंतु कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो भी कल्पना करो वो पूर्ण हो जाता है। भागवत भी एक कल्प वृक्ष है। यह भागवत से भी हमारे जीवन की समस्त इच्छा पूर्ण हो सकती है। परंतु भक्तों, भागवत और कल्प वृक्ष में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि कल्प वृक्ष कल्पना करने से, इच्छा करने से वस्तु देता है, परंतु देते वक्त यह नहीं सोचता है कि इनके जीवन के लिए अच्छा है या बुरा। एक सत्य घटना है, एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच गया और इस कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा रह गया। अब पत्नी और बच्चों से परेशान हुआ होगा बेचारा, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर यही सोचा कि यदि एक खटिया मिल जाती, सोने के लिए बिस्तर मिल जाए तो आनंद आ जाता। सोचते ही कल्प वृक्ष के द्वारा एक बहुत सुंदर पलंग बन गया। तो आगे उस व्यक्ति ने सोचा कि इस पलंग के ऊपर वह नरम नरम गद्दा मिल जाता तो और आनंद आता। इतना सोचते ही पलंग के ऊपर बहुत सुंदर गद्दा आ गया और वह उस कल्प वृक्ष के नीचे, उस कल्प वृक्ष की छाया में उस बिस्तर के ऊपर लेटने गया। जब मैं लेटने जा रहा था तब उसके मन में यह विचार आया कि यह घोर जंगल में मैं सोने जा रहा हूं, यदि शेर आ गया तो। जैसे ही यह विचार किया शेर आ गया तो तुरंत शेर प्रकट हुआ और उसको खाकर चला गया। यद्यपि कल्प वृक्ष है परंतु कितने लोगों को मरा देता है। यह नहीं देखता है कि उसके जीवन के लिए अच्छा है या नहीं, परंतु भागवत कल्प वृक्ष से भी करोड़ों करोड़ों गुना विशेष है। भागवत समस्त इच्छा को पूर्ण करने वाला है और जीव की सबसे बड़ी इच्छा होती है सुखी होना, भगवत प्राप्ति करना। यह भागवत भगवान को देने वाला ग्रंथ है। भागवत से भगवान मिलते हैं। भगवान को हम हमारे कैद में बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत भक्तों ने किया, माँ यशोदा ने किया, बलि महाराज ने किया, बड़े बड़े भक्तों ने भगवान को बंदी बनाकर रखा है। भगवान को देने वाला यह ग्रंथ है और अमृत के समान है। इसलिए पुराणों में एक कथा आती है, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाना प्रारंभ किए उसी समय सभी देवताओं ने मीटिंग की कि हमारे पास अमृत तो है परंतु नीचे पृथ्वी लोक में सुखदेव गोस्वामी कथा अमृत बांट रहे हैं। देवताओं ने मीटिंग की कि हमारे इस अमृत से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चलो सुखदेव गोस्वामी से कथा अमृत लेकर आए। अब देवता लोग में बहुत बुद्धि होती है, तो देवता लोग मीटिंग किए और समस्त देवता अपने स्वर्ग का अमृत एक कुंभ में घड़े में भरकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए। और सुखदेव गोस्वामी के पास आकर समस्त देवता विनय करने लगे, कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वा एव सुधाम इमाम। हे सुखदेव गोस्वामी, हम यह स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं आपके लिए, आप एक काम करो, स्वर्ग का अमृत आप रखो और इस स्वर्ग के अमृत के बदले में हमें कथा अमृत का पान कराओ। देवताओं ने स्वर्ग के अमृत के बदले सुखदेव गोस्वामी से कथा अमृत की इच्छा की। सुखदेव गोस्वामी बहुत क्रोधित हो गए। सुखदेव गोस्वामी यह विचार कर क्रोधित हो गए कि यह देवता लोग तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना कथा अमृत के साथ कर रहे हैं। भागवत कथा अमृत की तुलना में स्वर्ग का अमृत कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग का अमृत निरोग कर सकता है, उम्र बढ़ा सकता है, परंतु मृत्यु से नहीं बचा सकता है। परंतु भागवत कथा अमृत व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है, मृत्यु से बचा लेता है। सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हुए और क्रोधित होकर कहने लगे, देवताओं अभी तुरंत इसी वक्त यहां से भागो, ये स्वर्ग तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत के साथ कर रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान, कहां इतनी सुंदर कथा और कहां तुम्हारा यह तुच्छ अमृत। तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है और भागवत कथा अमृत एक हीरे के समान है। तुम कांच के टुकड़े और हीरे की तुलना कर रहे हो। सुखदेव गोस्वामी ने भगा दिया आवाज, निश्चित भागवत व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। आपने देखा श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में भगवान ने अजीत नामक अवतार लिया और अजीत नामक अवतार लेकर समुद्र मंथन करवाया और समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, परंतु वह अमृत पीकर देवता अमर नहीं बने। तब वही भगवान विष्णु कलयुग में वेद व्यास जी का स्वरूप धारण किए और वेद व्यास जी के रूप में वहां पर उन्होंने समुद्र का मंथन किया था और यहां पर वेद व्यास जी ने वेद और उपनिषद का मंथन किया। वहां समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट किया, यहां पर वेद व्यास जी ने वेद और पुराण और उपनिषद का मंथन करके भागवतम को प्रकट किया। तो यह भागवत कथा अमृत एक ऐसा अमृत है जो मृत्यु से बचाता है, जो हमारी मृत्यु को सफल बनाता है। तो ऐसे अमृत का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आइए बड़े धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ इस भागवत का हम श्रवण करें। कल हमने कथा सुनी परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किए, किस प्रकार अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः। सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को सर्ग की कथा सुनाई, किस प्रकार भगवान मूल सृष्टि करते हैं, किस प्रकार से भगवान मूल मटेरियल पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश प्रदान करते हैं, और तत्पश्चात विसर्ग की कथा सुनी, किस प्रकार वह पंच तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात हमने वराह देव की कथा, हिरणाक्ष की कथा, उद्धव जी और विदुर जी का मिलाप, इस प्रकार से तृतीय स्कंद की कथा, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज इत्यादि की कथा और पंचम स्कंद में दक्ष प्रजापति का यज्ञ, ऋषभ देव का प्राकट्य और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज की कथा हमने सुनी। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को लोक लोकांतर का वर्णन करते हैं और लोक लोकांतर का वर्णन करते करते किम पुरुष का वर्णन किया, सभी ब्रह्मांडों का, सभी लोक परलोक उपलोक सभी लोकों का वर्णन किया, साथ साथ नरक लोक का भी वर्णन किया और सभी लोगों में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं और अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग स्थिति में रहते हैं, यह वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। परीक्षित महाराज के मन में जिज्ञासा हुई, महर्षि एतद् विपर्यय लोकस्य कथम इति। हे महर्षि, इस संसार में सब लोग भगवान के पुत्र हैं, सब लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन एक गरीब और एक अमीर, एक दुखी एक सुखी, एक रोडपति एक करोड़पति, जीव में ऐसी विचित्रता क्यों है, कारण क्या है इसका? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए कि परीक्षित, कारण है कर्म। इस संसार में सब लोग कर्म करते हैं और सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। मैंने आपको कल सुनाया कर्म की गति गहन है, यद्यपि कर्म की गति को कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं बोधव्य कर्मण, कर्म की गति को जानना आवश्यक। कर्म का अर्थ होता है क्रिया कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं जो भी क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं और प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह शास्त्र साबित करता है और हमारे वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का फल आगे कभी ना कभी हमें मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं सभी जीवों को चाहिए कि सबको अकर्म करने चाहिए। यदि अकर्म नहीं करते हो, विकर्म या पुण्य कर्म करते हो, तब भी आप बंधन में फंस जाओगे, ये सत्य बात है। भगवान के नियम के विरुद्ध काम करना ये तो पाप है ही, परंतु पुण्य करना ये भी बहुत बड़ा बंधन का काम है। आप कहोगे ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अकर्म नहीं करता है, मान लीजिए पुण्य करता है। पुण्य का अर्थ होता है किसी अंधे को रास्ता क्रॉस करा दिया या किसी भिक्षु को दान में कुछ दे दिया या हॉस्पिटल बना दिया या स्कूल खोल दिया, इस प्रकार के पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। पुण्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है। और पुण्य करके व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में भी जब तक उसके पुण्य का अकाउंट होता है तब तक वह रह सकता है, फिर उसके पश्चात क्षणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, वह इस पृथ्वी में वापस आता है। भगवान कहते हैं कि अकर्म करो, मई एव मनाधत् स्वमई बुद्धि निवेशय, मेरे लिए कर्म करो, अपनी बुद्धि मुझे अर्पण करो, अपना मन मुझे अर्पण करो, अपनी काया कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, अपनी काया से अपने शरीर से जो भी काम करते हो मुझे प्रदान करो, इसे अकर्म कहते हैं। परंतु कोई अकर्म नहीं करता है और विकर्म करता है तो भगवान कहते हैं कि उसे बहुत बहुत दुख भोगना पड़ता है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मैं कल कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर है, मरने के बाद कुछ है ही नहीं। अरे मरने के बाद तुम्हें नहीं दिख रहा है तो क्या नहीं है? मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं, मान लीजिए आप फोन टेलीफोन में बात कर रहे हैं एचडी कॉल लगाया है और घंटों भर बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको कहे कि भाई घंटों से फोन चालू है रखो नहीं तो बिल आएगा, तो फोन में बात करने वाला व्यक्ति कहे कहां बिल आएगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है। यदि बिल होता तो मेरे सामने दिखता, परंतु वह बिल हमें सामने नहीं दिख रहा है। हम जितनी जितनी बात फोन में कर रहे हैं, जितना प्रति घंटे प्रति मिनट प्रति सेकेंड का हिसाब किताब टेलीफोन एक्सचेंज में हो रहा है, और जैसे ही एक महीना बीतता है तुरंत बिल आकर खड़ा कर जाता है। तो यदि हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो एक बार बिल नहीं भरोगे, दो बार नहीं भरोगे, तीसरी बार टेलीफोन वाले घर पर आएंगे। तो इस प्रकार हम जो कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें उसका फल दिख नहीं रहा है, परंतु शास्त्र कहता है उसका फल मिलता ही है। कर्म की गति बहुत न्यारी है। एक एक कर्म का फल हमें भोगतना होगा, और ये सभी भगवान के धाम में नोट हो रहा है। क्या बताऊं, कर्म का सिद्धांत बहुत विशाल है, परंतु एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इससे आप समझ सकते हो कितना कर्म का सूक्ष्म सिद्धांत है। शास्त्र में एक कथा आती है सदन कसाई की। सदन नाम का एक व्यक्ति था और जन्म से मुसलमान परिवार में जन्म लिया था। अब जो मुसलमान परिवार में जन्म लेते हैं तो जन्म से ही उसे पाप करना होता है। मुसलमान परिवार में जन्म और उसका बिजनेस था मांस बेचने का, बकरे का मांस बेचना, ये उसका जन्म से पेशा था। वे बकरे को काटता नहीं था, परंतु घर के लोग जो भी काट कर देते तो उसे बेचता था। लेकिन उसके जीवन में एक अद्भुत घटना थी कि वो जो मांस बेचता था तो मांस को तोलने के लिए जो क्या होता है वजन वेट होता है, तो वहां पर वजन नहीं शालिग्राम शिला रखता था। सदन के पास शालिग्राम शिला आ गई और शालिग्राम शिला इतनी चमत्कारी थी कि यदि कोई 5 किलो मांस लेने के लिए आता तो सदन उत्साह के साथ कहता कि 5 किलो के हो जाओ, तो वो शालिग्राम शिला 5 किलो की हो जाती और 5 किलो मांस तोल कर दे देता। कोई 2 किलो मांस लेने आता तो वो शालिग्राम शिला 2 किलो की हो जाती। कोई 10 किलो मांस लेने आता तो वो शालिग्राम शिला 10 किलो की हो जाती। सदन यह नहीं समझ रहा था कि यह शालिग्राम शिला है, भगवान है, वो तो यही सोच रहा था कि यह चमत्कार हो रहा है। तो नित्य शालिग्राम शिला को रखता था और इस शालिग्राम शिला से वजन करके मांस बेचता था। एक दिन की बात, कुछ 4-5 ब्राह्मण वह दुकान से होकर निकल रहे थे और उन्होंने देख लिया कि यह सदन कसाई शालिग्राम शिला से तोलकर मांस बेच रहा है। तुरंत ये ब्राह्मण ये सदन के पास गए और सदन के पास जाकर कहने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम, ये भगवान है, भगवान के साथ मांस को तोल रहे हो। सदन ने जैसे ही सुना कि ये भगवान है, तुरंत सदन के हृदय में बहुत दुख हुआ। कहा, मैंने ये क्या किया, मैंने जीवन में बहुत बुरा कार्य किया है। ब्राह्मण ने कहा, ये तुम मत रखो, इसे हम लेकर जाते हैं और हम इसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, गंगा जल से स्नान अभिषेक कराएंगे, तुम्हारे पास रहने के लिए तुम योग्य नहीं हो। 5 ब्राह्मण बेचारे सदन के शालिग्राम को लेकर चले गए। ब्राह्मण गए घर पर, घर पे मंदिर में उस शालिग्राम शिला को रखा और सोचे दूसरे दिन सुबह हम अभिषेक करके उसको मंदिर में पधराएंगे। परंतु सुबह नहीं हुई, 5 ब्राह्मण सो रहे थे। रात को 2 बजे भगवान शालिग्राम जी प्रकट होकर 5 ब्राह्मण को उठाए और कहने लगे कि तुम जहां से मुझे लेकर आए हो वहां पर अभी के अभी छोड़ दो, देर मत करो, अभी के अभी छोड़ दो, और यदि नहीं छोड़ोगे तो 5 की पिटाई करूंगा। कहा, प्रभु क्यों? कि 5 ब्राह्मण ने पूछा कि वह आपको मांस के साथ तोलता है। भगवान ने इतना ही कहा कि देखो ब्राह्मणों, भले वे मांस के साथ तोलता है परंतु उसका भाव बहुत अच्छा है, अपने हृदय से श्रद्धा के साथ वह मुझे रखता है उसके भाव में जो मुझे आनंद आता है वह आनंद ब्राह्मणों तुम्हारे जय जगदीश शहर में नहीं आता है। भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव ग्रही है, तुरंत छोड़ो वहां पर। पांचों ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते सदन कसाई के घर पर गए और जाकर वह शालिग्राम शिला वापस दिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये कथा में बहुत सिद्धांत है, यद्यपि कथा है परंतु इसमें बहुत चीज जानने मिलेगी। आए सदन कसाई के पास और कहने लगे इसे रखिए। सदन ने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान है, इसे मैं कैसे रख सकता हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो जन्म से अपवित्र हूं, अपवित्र कुल में जन्म लिया हूं। तब ये पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि ये भगवान हमें स्वप्न में आए थे और आकर पूरी घटना बताई। सदन कसाई का हृदय परिवर्तन हो गया, मेरे लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा, मेरे लिए भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सदन कसाई का जीवन परिवर्तन और प्रायश्चित करने के लिए सदन कसाई जगन्नाथपुरी धाम में जाने के लिए निकल पड़ा। अपना घर बार धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़कर पुरी में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकला। सत्य घटना। जब वह जगन्नाथपुरी जा रहा था तो आज यदि जगन्नाथपुरी जाना है तो दादर से ट्रेन पकड़िए, दो दिन में पहुंच जाएंगे। फ्लाइट से जाना है तो 3 घंटे में कलकत्ता। परंतु पहले के समय में तीर्थाटन करना होता था तो लोग चलकर जाते थे या हाथी घोड़े के ऊपर बैठकर जाते थे। ये सदन कसाई बेचारा चलते चलते जगन्नाथपुरी जा रहा था और जब रात होती तो किसी गांव में रुक जाता, किसी के घर में आश्रय मिल जाता। तो घूमते घूमते जा रहा था तो एक दिन रात हुई और रात को बहुत बारिश होने लगी। तो उस समय वह सदन किसी के घर को खटखटाया और घर से एक स्त्री ने वह दरवाजा खोला। सदन ने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं परंतु बारिश हो रही है तो एक रात के लिए सोने के लिए मुझे आसरा दे दीजिए। वह स्त्री ने कहा ठीक है, आप अंदर आ जाओ और यहां पर आप सो सकते हो। स्त्री सदन कसाई को उस वहां पर उस कमरे में बिठाकर अंदर चली गई। सदन कसाई वहां बाहर सो गया। रात को 1:30-2 बजे वह स्त्री अपने अंदर के कमरे से बाहर आई सदन कसाई के पास और सदन कसाई के पास आकर वह स्त्री कहने लगी कि हे अजनबी, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ संग करो। तब सदन कसाई ने कहा ये आप क्या कह रही हो, आप तो मेरी माँ के समान हो। इस संसार की सभी स्त्रियां मेरी माँ है और माँ को अपने पुत्र के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वह स्त्री तो काम कामातुराणाम न भय न लज्जा, वह तो काम वासना की आग में इतनी उत्सुक हो रही थी सदन कसाई को कहने लगी। सदन कसाई ने जब बहुत ना कहा वह स्त्री को लगा कि लगता है यह सदन यह व्यक्ति मेरे पति से डर रहा है, शादीशुदा थी। वह स्त्री तुरंत अपने बेडरूम में गई और बेडरूम में जाकर तलवार लेकर अपने सोए हुए पति का सिर काट डाला और सिर काटकर वह बाहर आई और कहा कि तुम मेरे पति से डरते थे ना, मैं उसे मारकर आई हूं यहां। जब काम का वेग आता है तो व्यक्ति को कुछ भी करा देता है। ये काम का वेग एक आंधी के समान आता है और तूफान की तरह व्यक्ति की बुद्धि को उड़ाकर चला जाता है। आपूर्ण मानम अचलम प्रविष्टम, गीता में भगवान कहते हैं जैसे समुद्र में आंधी आती है तो नाव डोलने लगती है, डूब जाती है, वैसे यह काम आंधी के समान है, हमारी इंद्रियों को डोला देती है। कितना भी धीर व्यक्ति, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। काम की अग्नि इतनी मजबूत और प्रचंड होती है। अपने पति को मार डाला, आई और कहा कि मेरे साथ संग करो, पति को मैंने मार दिया है। सदन तो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या किया तुमने, मैं जाकर सबको बताता हूं। जब सदन उस घर से बाहर निकलने की कोशिश किया तब स्त्री का एक लाइफलाइन होती है, तुरंत वह स्त्री अपने ही हाथ से अपने कपड़े को फाड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये सदन ये व्यक्ति ने मेरे पति को मार दिया है और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। पूरा गांव एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर सदन को बीच में बिठाया और सबने बहुत मारा पीटा गाली दी। अंत में पंच आए और पंच ने निर्णय दिया कि इसने अपने दोनों हाथों से उसके पति को मारा है, एक काम करो इस व्यक्ति के दोनों हाथ को काट डालो। उस दिन उस सदन के दोनों हाथों को काट दिया गया, कट गए। लेकिन फिर भी सदन के हृदय में भगवान की भक्ति कम नहीं, बढ़ती जा रही। वास्तव में शुद्ध भक्तों का यह स्वभाव होता है, जीवन में दुख आए तो भक्ति और बढ़ती है। और आयराम गयाराम भक्त तो थोड़ा भी दुख आता है तो फिर मंदिर में आना बंद कर देते हैं। सदन कसाई फिर भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा और दोनों हाथ कटे हुए थे फिर भी जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकला। जब सदन कसाई चलते 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 जगन्नाथपुरी की बॉर्डर में पहुंचा तो यहां पर जगन्नाथ जी के बहुत बड़े बड़े पंडित जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी ने सभी पंडों को दर्शन दिया और कहा कि मेरा एक बहुत महान भक्त यहां पर आया है, जाओ उसे पालकी में बिठा कर लेकर आओ। जगन्नाथ जी के पंडों ने कहा कि हम उसे पहचानेंगे कैसे? जगन्नाथ जी ने कहा कि उसके दो हाथ नहीं होंगे, जाओ जल्दी तुरंत लेकर आओ। जगन्नाथ जी के सभी पंडे गए और सदन कसाई को पालकी में बिठाकर जगन्नाथ जी के पास लाए। जगन्नाथ जी के मंदिर में आए और मंदिर में आकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया। सब लोग आरती कर रहे थे और आरती करते करते सब लोग ने हरि बोल करके जैसे हाथ ऊपर किया, सदन कसाई के मन में भावना हुई मुझे भी हरि बोल बोलना है। वे हरि बोल बोलने गया और भावना हुई कि हाथ ऊपर हो रहा है, हरि बोल बोलते ही सदन कसाई के हाथ आ गए। सदन कसाई के हाथ आ गए, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने जब सदन कसाई को दर्शन दिया तो सदन कसाई का सबसे पहला प्रश्न यह था, प्रभु प्रभु यदि हाथ देने ही थे तो वहां पर क्यों कटवाए? आप इतना परेशान क्यों करते हो? यदि यहां पर देने ही थे आपको तो वहां पर क्यों कटवाए? प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बात है क्या सब? तब जगन्नाथ जी ने कहा, सदन कर्म की गति गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बहुत न्यारी है। मैं समझाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे हाथ क्यों कटे और यहां पर क्यों आ गए। सदन तुम अगले जन्म में एक ब्राह्मण थे और वेदों का मंत्र जानते थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर तुम वेद पढ़ रहे थे। उसी समय एक कसाई के घर से गाय छूट गई और वह कसाई गाय का पीछा कर रहा था तो पीछा करते करते वह गाय वह ब्राह्मण के आगे से होकर निकली। भगवान जगन्नाथ जी सदन कसाई को अगले जीवन की कथा सुना रहे हैं। वह गाय निकली तो वहां से तीन रास्ते थे, एक एक गली में वह गाय चली गई और वह कसाई आकर खड़ा रह गया, सोच में पड़ गया कौन सी गली में गई होगी। सदन तुम तो वेदों का मंत्र पढ़ रहे थे, वह कसाई ने तुम्हें पूछा कि आपने गाय को देखा? तब सदन तो इतना बिजी था वेद पढ़ने में तो बोला नहीं, परंतु सदन ने इशारा कर दिया, वो गली में गई। आगे चलकर वह कसाई उस गली में गया और गली में जाकर गाय को काट डाला। सदन तुमने वह गाय को केवल इशारा किया कि वो गली में गई है, तुमने अपने हाथों से इशारा किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ कटे। गाय को निर्देश करने वाले के यदि दो हाथ कट गए तो आज जो लोग अपने हाथ से गाय को काटते हैं और काटकर उसे खाते हैं उसकी क्या हालत होगी, हम बताएंगे आने वाले मिनटों में कि उन लोगों की क्या हालत होती है। तो सदन केवल उस गाय का निर्देश किया इसलिए दोनों हाथ तुम्हारे कटे। सदन समझ गया प्रभु, लेकिन प्रभु मैं उस स्त्री के घर पर गया और वह स्त्री ने अपने पति को क्या सिर काट डाला, ये सब क्या है? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो वह जो कसाई था ना, वह दूसरे जन्म में एक पुरुष बना और वह जो गाय थी, कसाई ने जिस गाय को मारा था, वह गाय उसी की पत्नी बनी। कसाई पुरुष बना दूसरे जन्म में और वह गाय उसी की पत्नी बनी और तुम उसी के घर पर गए थे। जैसे वह कसाई ने गाय का सिर काटा था, वैसे ही वह स्त्री ने अपने पति का सिर काट डाला। ये कर्म का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। हम जैसी करनी करते हैं वैसा हमें फल निश्चित भोगतना पड़ता है। चाहे संसार की छोटी चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंद्र भी क्यों न हो, ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र को भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा फल भुगतना होता है। तो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल भुगतना पड़ता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल भुगतेंगे, यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आएगा। इस संसार में जो भी सुख और दुख आता है, ये हमारे पूर्व जन्मों के पूर्व के कर्म का फल है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम कर रहे इसलिए सुख मिल रहा है। ये जो भी सुख हमारे जीवन में आ रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यदि हम कुछ भी न करें फिर भी हमारे कर्म में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, न चाहते हुए भी। इस संसार में सब लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं, हम सुखी हो जाए कैसे भी करके, सब लोग सुखी होने के प्रयास में लगे हुए हैं। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं किसी को सुख खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे न चाहते हुए भी दुख मिल जाता है। इस संसार में कोई चाहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, आमंत्रण नहीं देते हैं फिर भी आ जाते हैं। जिसे न चाहते हुए दुख मिलता है वैसे ही न चाहते हुए भी सुख मिलेगा। तो सुख प्राप्त करने के फेर में नहीं पड़े रहना चाहिए। यदि हमारे जीवन में लिखा है तो वो हो कर ही रहेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। बहुत ज्यादा हाई हाई और ओवर टाइम और हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। और यदि आपके जीवन में नहीं लिखा है तो ऊपर से गिरकर मर जाओ, कितना भी हार्ड वर्किंग करो, गधे की तरह मेहनत करो, नहीं लिखा है तो कभी नहीं मिलेगा, और लिखा है तो न चाहते हुए भी मिलेगा। बहुत बहुत दृष्टांत याद आ रहे हैं, परंतु हमें बहुत आगे बढ़ना है। फिर भी एक दृष्टांत मैं आपको दे दूं। एक गुरुजी इसी प्रकार से प्रवचन कर रहे थे, कर्म का सिद्धांत बता रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जीवन में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। प्रवचन के बाद उनके शिष्य ने गुरुजी को प्रश्न पूछा, अच्छा गुरुजी, जो जीवन में लिखा है वही होता है, तो बताइए कल मेरे भाग्य में क्या खाना लिखा है, कल भोजन में मेरे लिए क्या लिखा है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दूसरों को गिराना चाहते हैं। शिष्य ने सोचा कि मैं गुरुजी को गलत साबित कर दूंगा। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, कल तुम्हारे नसीब में खीर खाना लिखा है। अब तो शिष्य प्लान लगाने लगा कि ऐसा काम करूं ताकि खीर में खाऊं ही नहीं और फिर कल रात को आकर गुरु को कहूंगा कि आप झूठे हो। गुरु को झूठा साबित करना चाहता था। तो उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन अब यहां घर पर रहूंगा तो खीर खाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा वहां कौन खीर खिलाएगा। दूसरे दिन अपने गुरु को झूठ साबित करने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में जाकर भी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। कोई मुझे मिले नहीं, रात तक यहां पर उपवास करूंगा और गुरु जी को झूठा साबित कर दूंगा। लेकिन जैसे जो कर्म में लिखा है वो होकर ही रहता है। वहां पर एक घटना घटी, आपने देखा होगा कई सारे गाय और बैल और बकरी को चराने वाले ग्वाल होते हैं। तो कई सारी गाय बकरी और बैल को लेकर कई सारे ग्वाल वाल उस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए सबको भूख लगी और सोच ही रहे थे कि कुछ किसी जगह पर बैठकर कुछ भोजन कर ले। तो चलते चलते आ रहे थे, उतने में इस लोगों ने यही पेड़ को देखा, बहुत अच्छा पेड़ है, छांव है। तो सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को इसी पेड़ के थड़ में बांध दिया। गाय बकरी सब उस पेड़ के नीचे बैठे और सब लोग ने सोचा कि गाय तो हमारे पास है, दूध दोह लेते हैं और चावल पड़े हैं, चीनी पड़ी है, यहां पर आग लगाओ। उसके ऊपर बर्तन रखा, दूध डाला, चीनी डाली और राइस डाला, चावल डाला और बनाने लगे खीर। वो ऊपर बैठे बैठे सोच रहा है कि गांव से भागकर जंगल में आया, लेकिन यहां पर खीर बन रही है, लेकिन खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। उसी पेड़ के नीचे खीर पक रही थी, बहुत सुंदर खीर पकाई जा रही थी, पकाई जा रही थी। उतने में एक समाचार मिला, एक न्यूज मिला कि यहां से कई सारे डाकू निकल रहे हैं। और पहले के डाकू केवल धन ही नहीं चुराते थे, पशुओं को भी चुरा लेते थे। तो यहां से कई सारे डाकू निकल रहे हैं, सब लोग भागने लगे, भागो भागो, सब कुछ छोड़कर भागो, अपनी जान बचाओ और पशुओं को बचाओ। तो वह खीर का जो पात्र था वहीं रह गया, खीर वहां पर पकती रह गई और ये सब लोग भाग कर चले गए। डाकू की टोली आई और आकर देखा तो खीर पक रही थी। सब लोग ने छोड़ा, छोड़ो चोरी तो कल करेंगे, खीर कभी खाने मिलेगी और वो भी इस्कॉन की, क्योंकि बहुत पक रही थी, गाय के दूध की खीर थी, बहुत सुंदर गाढ़ी खीर हो चुकी थी। और डाकू का सरदार था, वह तो पहले ही पात्र भर के खाने गया। तुरंत दो तीन जन ने रुका दिया, सरकार खाओ मत, तुम नहीं जानते हो हम लोगों को मारने के लिए कितनी साजिश रची जाती है। लगता है गांव वालों ने यहां पर खीर में जहर मिला दिया है और जहर मिलाकर गांव वाले हमें मारना चाहते हैं सरकार। सरदार ने कहा, वाह तुमने लाख टके की बात की, डाली वापस खीर। अब सरदार ने कहा कि इसमें जहर मिलाया किसने, पकड़ो उसे। डाकू की पूरी टोली उस व्यक्ति को किसने जहर मिलाया पकड़ने में लग गई। कुछ वहां गए, कुछ वहां गए, कुछ वहां गए, सब लोग घूमने लगे उसे ढूंढने के लिए। उतने में उस टोली में एक काना डाकू था जिसकी एक ही आंख थी। वो ढूंढ रहा था आगे पीछे नीचे, तो उसकी नजर ऊपर गई, सरकार मिल गया। वो ऊपर से बोल रहा था, मैं खीर नहीं खाऊंगा, खीर नहीं खाऊंगा, कन्फर्म हो गया इसने ही जहर मिलाया है, क्योंकि खीर खाने के लिए ना कह रहा है। दो तीन जन ऊपर चढ़े और उसे नीचे उतारा, नीचे उतार कर दोनों हाथ और पांव बांध दिए, कहा प्रभु कुछ भी करो परंतु खीर मत खिलाओ, खीर मत खिलाओ। जबरदस्ती वह सरदार ने कहा, देखो पहले इसे खिलाओ, पता चले जहर कितना मिलाया है, मरेगा तो ये मरेगा। चार पांच डाकुओं ने मिलकर जबरदस्ती उसे खीर खिला ही दी। दूसरे दिन दौड़कर गुरुजी के चरणों में आकर गिर गया, गुरुजी आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य था, न चाहते हुए भी खीर मिल गई। भक्तों उसी प्रकार जीवन में यदि सुख लिखा है तो न चाहते हुए भी मिल जाएगा, बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास केवल भगवान की भक्ति में करना चाहिए और सब तो जैसे दुख आते हैं वैसे सुख आते ही रहेंगे। तो कर्म का यह सिद्धांत है, यदि अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्जुन जो लोग सत्व गुण में रहकर अच्छे कार्य करते हैं वह ऊर्ध्वम गति ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण में रहकर जो कार्य करते हैं वह मध्य तिष्ठन्ति वो यहीं पर रह जाते हैं, और तमोगुण में आकर जघन्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वह अधो गच्छन्ति नीचे के नरक लोक में जाते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी नरका नाम भगवान किम देश विशेषा, ये नरक क्या है? मैंने सुना है नरक के बारे में, ये नरक है क्या? नरक के बारे में आप हमें बताइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नरक भगवान की द्वारा रची गई एक जेल है। जैसे इस शहर में यदि कोई गवर्नमेंट का नियम तोड़ दे तो उसे जेल में बंद किया जाता है, वैसे भगवान का कोई नियम तोड़ दे तो उसे नरक में बंद किया जाता है। और इस नरक का सुपरिटेंडेंट नरक के राजा है यत्र हाउ भगवान पितृ राज वैवस्वत, विवस्वान सूर्य के पुत्र यमराज इस नरक के राजा है। इस नरक का डिपार्टमेंट भगवान ने यमराज के हाथ में सौंपा है। यमराज जी इस संसार में जितने लोग पाप करते हैं उन लोग को सजा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने पूछा कि नरक के बारे में मुझे विस्तृत रूप में बताइए, कौन जीव कैसा कर्म करता है तो किस नरक में जाता है, ये सभी नरकों का वर्णन विस्तृत रूप में मुझे कीजिए। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को देखकर सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। सावधान हो जाइए भक्तों, और हमें यही देखना है कि कहीं हम इस नरक में फिट तो नहीं होते हैं। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि हे परीक्षित, नरक पृथ्वी से बिल्कुल नीचे सबसे अंतिम लोक के नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की ओर यह नरक लोक है, और नरक से बिल्कुल बगल में बिल्कुल बाजू में पितृ लोक है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में पाप करता है तो पाप करने वाले को यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं। जबरदस्ती सपास हस्तान तीन दृष्टवा यमपाश लेकर आते हैं और जबरदस्ती यह शरीर से हृदय से उस आत्मा को निकाला जाता है। और यमदूत भी साधारण यमदूत नहीं, बहुत भयानक होते हैं। काजल के पहाड़ के समान उसकी आंखें होती हैं, तांबा के तार के समान उसके रोंगटे होते हैं, वक्र तुंड ऊर्ध्व रोमणम उसके मुख बिल्कुल टेढ़े होते हैं, देखकर ही व्यक्ति भयभीत हो जाए। यमराज के दूत ऐसे हैं जिसको देखकर टट्टी और पेशाब हो जाता है, इतना भय लगता है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वास्तव में उसे उसने जीवन में भजन नहीं किया है तो अंत समय में उसे पसीना छूट जाता है और टट्टी और पेशाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यमदूत को देखकर जबरदस्ती, न वो चाहता नहीं है कि शरीर से निकलूं, परंतु जबरदस्ती वो यमराज के दूत उसे खींच लेते हैं, निकाल देते हैं, और निकाल कर यहां से उसे पितृलोक लेकर जाते हैं। पृथ्वी से पितृलोक 99,000 योजन दूर है, 99,000 योजन का रास्ता उसे दौड़कर घसीट कर तय करवाते हैं। और रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, जब वह जीव पानी मांगता है तो यमराज के दूत उसे डंडे मारते हैं और कैसे भी करके पितृलोक में पहुंचाते हैं। पितृलोक में पितृलोक के राजा यमराज जी उस जीव का निर्णय करते हैं, क्योंकि जीव ने क्या क्या पाप किए हैं ये सब का हिसाब किताब लेखा जोखा यमराज जी के पास है। यमराज जी के कई सारे सेक्रेटरी हैं, यमराज जी के कई सारे ऐसे नियुक्त किए हुए लोग हैं जिसे चित्रगुप्त कहा जाता है, वे संसार के सभी लोगों का हिसाब किताब रखता है। और यमराज जी चित्रगुप्त द्वारा जान लेते हैं किस व्यक्ति ने क्या पाप किया है और उस पाप की सजा यमराज जी सुनाते हैं, सुनवाई करते हैं। और सजा सुनाकर यमराज के दूत, यमराज के 10-15 दूत मिलकर एक जीव को मारने के लिए, दंड देने के लिए नरक में लेकर जाते हैं। अब ये नरक में क्या होता है, वास्तव में यह नरक का वर्णन करना मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि नरक इतना भयावह है, इतना भयावह है, मेरे जैसे मुझे यदि 10 मुख भी मिल जाए फिर भी नरक कितना भयावह है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। यदि मैं आपको नरक लोक का वर्णन करूं तो वो मेरे से बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि नरक जितना भयावह है उतना मेरी वाणी वर्णन नहीं कर सकती। सुखदेव गोस्वामी भी पछतावा करते हैं, परीक्षित जितना भयावह नरक लोग है उतना मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति नरक लोग कितना भयानक होता है कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर भी आप श्रद्धा से सुनिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर मांसाहार करता है, जीवन भर किसी पशु का मांस खाता है या अंडा खाता है, नॉनवेज खाता है, किसी भी प्रकार का मांस खाता है, यमराज जी उसे कुंभीपाक नरक में भेजते हैं। कुंभीपाक नामक नरक में 10-10, 15-15 यमदूत एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं। और मैं आपको पहले से ही कह दूं कि जब यमराज जी सुनवाई करते हैं तब यमराज जी उस जीव को एक नया शरीर देते हैं। सुदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस शरीर का नाम है यातना शरीर। हमारे पास अभी जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, परंतु नरक लोक में एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसका नाम है यातना शरीर। उस शरीर की विशेषता क्या है? हम जिस शरीर में बैठे हैं, इस शरीर को थोड़ा भी यदि ज्यादा कष्ट दिया जाए, लिमिट से थोड़ा भी ज्यादा कष्ट हो, तो यह शरीर आत्मा को त्याग देता है। परंतु नरक लोक में यमराज जी जो यातना शरीर देते हैं, उसमें व्यक्ति को कितना भी मारा जाए, कितना भी पीटा जाए, काटा भी जाए, फिर भी वो मरता नहीं है। ये पहली विशेषता, मरता नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? यहां के इस शरीर को यदि कोई मारे तो दर्द होता है, परंतु यमराज के द्वारा दिए गए यातना शरीर को जब मारते हैं तो यहां से करोड़ों गुना ज्यादा दर्द होता है। दर्द होता है इस शरीर से करोड़ों गुना ज्यादा दर्द होता है, परंतु मरता नहीं है। क्योंकि यदि मर जाता तो सब खेल समाप्त हो जाता, उसे तो दंड देना है, दुखी करना है, शुद्ध करना है। इसलिए यमराज जी यातना शरीर देते हैं और 10-15 यमदूत एक व्यक्ति को पकड़कर उस नरक लोक के उस लोक में लेकर जाते हैं जिस लोक का नाम है कुंभीपाक नरक। याद रखिए, जिस जिस लोगों ने मांसाहार किया है, नॉनवेज खाया है, मुर्गी फ्राई, ये फ्राई, वो फ्राई, भागवत कहता है, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, ये वेदों का सार है, ये कोई कल्पना नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मांसाहार करने वाले को कुंभीपाक नरक में। और ये कुंभीपाक नरक कैसा है? इस नरक में बहुत बड़ी एक कड़ाई होती है। कड़ाई जैसे हम वड़ा और भजिया तलने के लिए, फ्राई करने के लिए जो कड़ाई हमारे गैस पर लगाते हैं तो बहुत छोटी होती है, नरक लोक में जो कड़ाई होती है वो बहुत किलोमीटर बड़ी होती है और उसमें कई सारा लीटर तेल डाला जाता है और उस कड़ाई को नीचे से फुल हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। और जब वह कड़ाई नीचे से गर्म होती है तो उस बहुत बड़ी कड़ाई में जो तेल होता है वह खोलने लगता है, उबलने लगता है, कभी कभी तो आग की लपट लगती है उसमें। बिल्कुल वह तेल खोला हुआ है, खोलते रहता है। और उस व्यक्ति को जिसने मांसाहार किया है, अंडे खाए हैं, उस व्यक्ति को मारते हुए, पीटते हुए, कोड़े से, डंडे से मार मार कर घसीटते हुए उस व्यक्ति को इस कड़ाई के पास लाया जाता है। और 10-15 यमदूत उस एक जीव को उठाते हैं और उठाकर कहते हैं कि चलो अभी उसको इस गरम गरम तेल में डालो। व्यक्ति ना कहता है मत करो, आज से मैं मांसाहार नहीं करूंगा, कभी अंडे नहीं खाऊंगा, कभी मांसाहार नहीं करूंगा, चिल्लाता है, बहुत प्रार्थना करता है, पांव पकड़ता है, परंतु यमराज के दूत ऐसे हैं कि उस जीव की एक नहीं सुनते। बिल्कुल ट्रेंड किया जाता है। आजकल के पुलिस मान लीजिए कुछ लांच और घूस रिश्वत भी ले ले, परंतु वहां पर ऐसा नहीं है। जैसी करनी है, जैसा जैसा पाप किया है उसकी सजा उसको देते ही है। विलखता है, कहता है मत डालो, मत करो, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यमराज के दूत उसे और पीटते हैं। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला था, इतनी सुंदर भगवान ने बुद्धि दी, क्या तब तुम्हारी बुद्धि नहीं चली? इतना सुंदर भारत भूमि में जन्म दिया भगवान ने तुम्हें, भारत भूमि संतों की भूमि, और संत के पास तो तू कभी गया नहीं, संत जब तेरे पास आते थे तब भी तूने उसका उपदेश नहीं सुना, चल अभी यहाँ पर। जबरदस्ती उस जीव को पकड़कर वह चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, परंतु उस चिल्लाते हुए जीव को उस गरम गरम खोलते हुए तेल में डाला जाता है। छन करके आवाज आती है, उसका शरीर बिल्कुल खोलने, खून निकलने लगता है, मांस बाहर आने लगता है, और व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित होकर बेहोश हो जाता है। जब बिल्कुल मूर्छित हो जाता है तो उसे बाहर निकाला जाता है और आए आए करता है, अरे बाप मर गया अब कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसे होश आता है तुरंत यमराज के दूध उसे उठाते हैं और उठाकर फिर से उस कढ़ाई में डालते हैं, और उस गरम गरम तेल में जब वो बेहोश हो जाता है तो फिर से बाहर निकालते हैं। थोड़ा बहुत होश आता है तो फिर से, देखिए याद रखिए, मरता नहीं है वहां पर कोई जीव। दुख और दर्द होता है, बहुत दुख, बहुत यातना, बहुत दंड, बहुत शरीर को कष्ट, परंतु वहां से छूटने की कोई जगह नहीं है। वो भागता है आगे पीछे, परंतु कोई जगह उसे नहीं मिलती। तो ऐसे एक दो बार नहीं, ऐसे हजारों बार उस तेल में डाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, डालना बाहर निकालना इस प्रकार से किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक दो दिन के लिए नहीं, हजारों हजारों सालों के लिए, हजारों हजारों सालों तक एक जीव को इस प्रकार से दंडित किया जाता है। आगे जब सुखदेव गोस्वामी इससे बचने का उपाय बताएंगे तब कहते हैं कि किसी भी जीव को चाहिए कि प्रायश्चित कर ले। यदि हम हमारे पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं तो यहां पर यदि एक पाप करते हैं और उसकी सजा करोड़ों गुना नर्क में मिलती है। तो एक यदि एक बार भी मांसाहार किया है वह व्यक्ति गया, समझिए, उसे कोई नहीं बचा सकता है। वह अपने पुत्र से कितना भी प्रेम करे, वहां पर पुत्र कोई आएगा नहीं बचाने के लिए। पत्नी कितनी भी अच्छी हो, नरक से नहीं बचा सकते हैं कोई। इसलिए हम सबको ध्यान में रखना चाहिए मांसाहार न हो। भागवत कहता है यदि मांसाहार किया तो कुंभिपाक नामक नरक में डाला जाएगा। अब आगे सुखदेव गोस्वामी और एक नरक का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ संग करता है, या यदि कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के साथ संग करती है, तो ऐसे जीव को तप्त सुरमी नामक नरक में डाला जाता है। ये तप्त सुरमी नामक नरक बहुत भयानक नरक है। इस नरक में जो पुरुष जैसी स्त्री के साथ इस जगत में संग करता है, ऐसी ही स्त्री को वहां पर लोहे की स्त्री बनाई जाती है, और लोहे की स्त्री को बिल्कुल गरम गरम हीट पे गरम की जाती है। जैसे लोहा जब गरम होता है तो लाल हो जाता है, उसमें से रोशनी निकलने लगती है। जिस पर स्त्री के साथ संग किया है, ऐसी स्त्री, लोहे की स्त्री, बिल्कुल गरम गरम लाल तपाए हुए लोहे के समान वह रहती है, और ये 10-15 यमदूत उसके हाथ पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं। जिस प्रकार पर स्त्री के साथ संग किया था, वैसे ही नरक में उस गरम गरम लोहे की स्त्री के साथ उसे संग करवाया जाता है, जबरदस्ती। भागता है, मत कीजिए, मैं नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मनुष्य जीवन मिला था अपनी भूल को सुधारने के लिए, इतनी सुंदर बुद्धि मिली। इस्कॉन के भक्त घर पे आकर समझा रहे थे, फिर भी नहीं समझा, और 2-3 गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और जबरदस्ती उस गरम गरम लोहे के साथ उसको संग करवाते हैं। चमड़ी निकल जाती है, खून पस निकल जाता है, चिल्लाता रहता है जीव, परंतु वहां पर इतनी परवशता है कि कोई उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। इस प्रकार से पर स्त्री संग करने वाले तप्त सुरमी नामक नरक में जाते हैं। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी तीसरे नरक का वर्णन करते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, अब शराब नशा, अब नशे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते ही होंगे। नशा का अर्थ है शराब पीना और गुटखा खाना, तंबाकू खाना और चाय भी नशे में आती है भक्तों। यदि कोई शराब पीता है, चाय कॉफी इत्यादि ये नशा करता है, देखिए हम नहीं कर रहे आप चाय मत पियो, पियो खूब पियो, लेकिन कहां जाओगे ये हमें बता देता हूं। हमें क्या है, कोई तप्त सुरमी में जाए, कोई कुंभी पाक में जाए, अच्छा है यमराज की फैक्ट्री अच्छी चलेगी। नहीं नहीं, हम तो वास्तव में दुखी हैं इसलिए कह रहे हैं। तो जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं और इत्यादि पान मावा सिगरेट तंबाकू जिस प्रकार का नशा करते, इस प्रकार का नशा करने वाले को अई पानह नरक में डाला जाता है। यमराज के द्वारा यह अद्भुत नरक का निर्माण हुआ है। इस नरक में कई सारे यमदूत होते हैं और नशा करने वाले को, खास करके शराब पीने वाले को इस नरक में लेकर जाते हैं और इस नरक में लेके जाकर सबसे पहले जो पापी होते हैं उसे बहुत पीटते हैं। अब मैं हर बार हर नरक में ये बात नहीं बताऊंगा कि पीटते हैं, डंडे से मारते हैं, चाबुक मारते हैं, ये तो है ही, हर बार क्या बताना आपको, ये तो समझ ही लीजिए कि ये तो कॉन्स्टेंट, ये तो मारा ही जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ विशेष क्या सजा देते हैं, नशा करने वाला अई पाना नरक में लेकर जबरदस्ती लेकर जाते हैं और उस जीव के दो हाथ पीछे से दो यमदूत जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ते हैं, दो यमदूत जबरदस्ती उसका पांव पकड़ते हैं, एक यमदूत जबरदस्ती उसका बाल पकड़ता है, एक यमदूत जबरदस्ती रस्सी लेकर आता है और उसके यहां पर लगाता है, एक जोर से बाल खींचा, एक वह रस्सी खींचा और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, मुंह बिल्कुल मुंह को फाड़ देते हैं और मुंह को फाड़ कर खड़े रखते हैं। तो तीन चार यमदूत, भागवत में लिखा है जिसने जितना लीटर शराब पिया है, जिसने जितना लीटर चाय पिया है, जिसने जितना लीटर मावा का रस खाया है, जिसने पूरा उसका हिसाब होता है और उसके मल्टीप्लाई बाय 100,000 उतना लीटर का लोहे और शीशे का रस, शीशा एक धातु होता है, लोहे और शीशे का रस जब उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब वे लिक्विड हो जाता है। गरम गरम लोहे का रस लेकर आते हैं, वह जीव तो दूर से ही भागने लगता है, अरे छोड़ो छोड़ो मैं नहीं पीऊंगा, जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा, कभी चाय कभी कॉफी नहीं, कभी शराब नहीं पीऊंगा, जोर जोर से चिल्लाता है। परंतु 10-10 यमदूत एक व्यक्ति को पकड़कर बैठे हैं, वह हिल भी नहीं सकता है, जबरदस्ती उसके फाड़े हुए मुंह में गरम गरम शीशे और लोहे का रस डाला जाता है और व्यक्ति चिल्लाने लगता है, मुंह जल जाता है, पूरी सिस्टम जल जाती है, परंतु मरता नहीं है। दुख बहुत होता है, दर्द होता है, दंडित होता है, प्राण नहीं छूटते हैं, और ऐसे एक बार नहीं हजारों बार उसे इस प्रकार से गरम गरम लोहे का रस पिलाया जाता है। मैं नहीं, भागवत कह रहा है। भक्तों यदि भागवत पर श्रद्धा है तो इस बात को स्वीकार कीजिए और यदि भागवत पर श्रद्धा नहीं है तो यहाँ पर बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको गीता और भागवत के ऊपर श्रद्धा नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य नहीं है और केवल यहाँ पर मनुष्य के लिए जगह है। कड़ा सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। परीक्षित महाराज आगे बहुत दुखी होंगे, इतना कुछ बताने के बाद भी लोग नशा करते हैं, ये क्या हो रहा है संसार में। बहुत सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी कहे कि नशा करने वाले को अयोह पानह नरक में डाला जाता है। चौथे नरक का वर्णन करते हुए कहते हैं यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, जुआ का अर्थ तो आप जानते होंगे, जुआ का अर्थ होता है सट्टा खेलना, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह ताश हो, फिर चाहे वह कौन बनेगा करोड़पति हो, किसी भी प्रकार का जुआ यदि कोई खेलता है तो ऐसे व्यक्ति को संदश नाम के नरक में डाला जाता है। इस संदर्श नाम के नरक में जुआ खेलने वाले को इस नरक में सबसे पहले बहुत पीटा जाता है और पीट कर उस जीव की दोनों हाथ पांव सिर सब कुछ पकड़ कर संडसी से उस जीव की एक एक करके सारी चमड़ी निकाल दी जाती है। ये जो चमड़ी है हमारी चमड़ी के ऊपर ये सात चमड़ी का स्तर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद मांस आ जाता है। वह यमदूत एक एक करके सभी चमड़ी का स्तर निकाल देते हैं और मांस को बाहर कर देते हैं, फिर से ठीक हो जाता है, फिर से बार बार लगातार इस प्रकार से जुआ खेलने वाले को दंडित करते हैं, हजारों हजारों जन्मों तक इस प्रकार से दुखी करते हैं, दंड देते हैं। और यमदूत भी इतने भयावह है, उसे कभी दया नहीं आती। यहां का कोई पुलिस हो तो उसे दया भी आ जाती है कि भाई छोड़ दो, बेचारा बहुत दुखी हो रहा है। यमराज जी ने इस प्रकार से ट्रेन करके रखा है कि वहां पर दया नाम की कोई चीज नहीं। पांचवें नरक का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लेता है, ये किडनैप वालों के लिए यह नरक है। जो किडनैप करते हैं, किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया, किसी के पुत्र का अपहरण कर लिया, या किसी के धन को चुरा लिया, धन का अपहरण किया, तो दूसरों को का अपहरण करने वाला तामसरी नामक नरक में जाता है। और इस नरक में व्यक्ति को बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, दंडित किया जाता है, हजारों हजारों वर्षों तक रखा जाता है। उसे भूख लगती है, परंतु भूख लगने पर डंडे मारते हैं, पीटते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक ये इसे भूखा। अब आप देखिए, एक दिन भी हम भूखे रहते तो कितना दुख होता है। एक बार निर्जला पांडव एकादशी करते हैं, सबको अनुभव होगा, एक दिन भूखा रहने पर कितना दुख होता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हजारों हजारों सालों तक व्यक्ति को भूखा रखा जाता है, लाचार हो जाता है, राक बन जाता है, परंतु उसे कुछ दिया नहीं जाता है और भोजन मांगने पर उसे पीटा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे की पत्नी, पुत्र, धन का अपहरण करने वाले को तामसरी नरक में। छठे नरक का वर्णन करते हैं, ये नरक में बहुत ज्यादा लोग हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो लोग मच्छर को मारते हैं, जो लोग चींटी को मारते हैं, जो लोग कॉकरोच को मारते हैं, और शायद सुखदेव गोस्वामी कहे होंगे इसमें माताएं ज्यादा हैं, स्त्रियों का प्रमाण ज्यादा है इसमें। तो जो लोग मच्छर को, छोटे छोटे कीड़े को, मकोड़े को या कॉकरोच को, बेचारे अबुद जीव का जो वध करते हैं, चाहे वह बैगोन हो, चाहे लक्ष्मण, देखिए मैंने तो पढ़ा कि कॉकरोच मारने के लिए एक दवाई निकली है जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा। किसी को मार रहे हैं और उसका नाम रहे भगवान का नाम लक्ष्मण रेखा। हम तो रोज मीरावट मंदिर जाते हैं तो देखते हैं एक बियर बार है, कृष्णा बियर बार। कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य हैं समझना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग मच्छर को मारते हैं, कॉकरोच को मारते हैं, छोटे छोटे अबुद जीवों को मारते हैं, ऐसे पापियों को अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। और इस अंधकूप नाम के नरक में उसे बहुत पीटा जाता है, कोड़े से मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है। और उसने जिस मच्छर को मारा है, जैसे मच्छर को मारा है, वैसे 15-20 फुट का मच्छर बनके वहां पर उसका इंतजार करते रहता है। ये व्यक्ति जाता है, याद कराता है, उस दिन में ये घर पे बैठकर ये कोने में ये मच्छर मारा था, याद है? नहीं याद है। जोर से थप्पड़ मारते हैं यमदूत, याद करो, याद करा करा करके वो मच्छर के द्वारा उसे काटा जाता है, पीटा जाता है, दंडित किया जाता है। जैसे मच्छर को मारा, चींटी को मारा, उसी प्रकार उस जीव को हजारों हजारों सालों तक दुख दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए अंधकूप नामक नरक। अब सातवें नरक का वर्णन करते हैं, इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान को नहीं समझता है और भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, और जो बूढ़े लोगों को छोड़कर या बच्चों को छोड़कर दूसरों को छोड़कर अकेला अकेला भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद नहीं खाता है, जो दूसरों को खिलाए बिना अकेला अकेला खाता है, उसे कृमि भोजन नाम के नरक में डाला जाता है। उसे कृमि भोजन नाम का नरक 100,000 योजन बड़ा है, और 100,000 योजन नरक में बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं, चील, कबूतर, कौवे, और ये चील, कबूतर, कौवे बहुत लंबी लंबी चोंच वाले होते हैं, और अपनी अपनी चोंच से इस जीव को, जिन्होंने भगवान को भोग नहीं लगाया जीवन में कभी, जिन्होंने वृद्ध को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर या बच्चों को छोड़कर अकेले अकेले भोजन किया, उसे बहुत वह प्राणी व पशु दंडित करते हैं, मारते हैं, चूमते हैं। इस प्रकार से सातवां नरक, आठवें नरक का नाम है सार मेयादन। जो लोग बिजनेस में झूठ बोलते हैं, जो लोग दूसरे को झगड़ा कराते हैं, अब झूठ बोलना भी चाहे तो बहुत कम, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना काम चल जाए उतना ठीक है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि झूठ बोलना चाहिए कितना, जितना दाल में नमक हो उतना, दाल में जितना नमक डालते हैं उतना झूठ ठीक है, परंतु हमारा जीवन तो नमक में दाल है, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। आप देखो, ट्रेन चर्चगेट से कोई बोरीवली आ रहा है और अंधेरी आया है, किसी का फोन आया, कहां पहुंचे, तो कहेगा मलाड़ पहुंच गया है, अंधेरी पे, लेकिन फोन में बोलेगा मलाड़ पहुंच गया। कोई तात्पर्य नहीं है इसका, परंतु एक आदत हो गई है झूठ बोलने की, और झूठ बोलते 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 फिर सच भी बोलना हो तो झूठ ही निकल जाता है, झूठ बोलते हैं। वास्तव में झूठ बोलना यह बहुत बड़ी कायरता है। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछे, इस संसार में सबसे बड़ा वीर कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संसार में सबसे बड़ा वीर है सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला। सत्य बोलना यह सबसे बड़ी वीरता है। इस संसार में छोटा सा झूठ बोलकर अपना काम चला लेते हैं सब लोग, परंतु सत्य पर अड़ग रहना यह बहुत बड़ी वीरता है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं उसे सार मेयादन नाम के नरक में डालते हैं, और इस नरक में गिना रहे सुखदेव गोस्वामी, ऐसे कुत्ते होते हैं, उस कुत्तों का दांत वज्र के समान कठोर होता है, और बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, आज के एल्सेशियन या डोबरमैन ये तो बहुत छोटे हैं, वहां के बहुत बड़े बड़े कुत्ते और वज्र के समान दांत। सुखदेव गोस्वामी गिनती कराए रहे हैं, 720 कुत्ते खड़े रहते हैं। इस जीवन में जो लोग झूठ बोलते हैं उसके लिए 720 कुत्ते इंतजार कर रहे हैं, और यमदूत एक कमरे में 720 कुत्ते बंद होते हैं, 10-15 यमदूत मिलकर इस जीव को धक्का मारकर उस कमरे में डाल देते हैं और बाहर से बंद कर देते हैं। अरे 720 कुत्ते हजारों हजारों सालों से बेचारे भूखे हैं, सबसे पहले तो इसको बहुत भगाते हैं, ये भागता है कुत्ते उसके पीछे पीछे, कितना भागेगा, और वह कुत्ते अंत में इसे पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसे नोच डालते हैं, इतना मारते हैं, पीटते हैं, नोचते हैं। कुत्ता एक बार भी यदि डंक मार देना तो पता चले 14 इंजेक्शन लेना पड़ता है। 720 कुत्ते एक व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नरक का वर्णन मैं कर रहा हूं अपराध कर रहा हूं, क्योंकि ये नरक कितना भयावह है, मैं इसका जितना भयावह है उतना मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, परंतु फिर भी आप समझिए कि मेरी ये वाणी बहुत हल्की हो रही है नरक का भयावह वर्णन करने के लिए। बहुत डेंजर, बहुत भयानक है यह नरक, बहुत दुख दंडित किया जाता है, दुख दिया जाता है। आठवें नरक का नाम है अविचिमान। जो लोग झूठी गवाही देते हैं और जो बहुत बहुत संसार में गलत काम करते हैं उसे इस नरक में डाला जाता है। नौवे नर का नाम है, नहीं दसवें नर का नाम है पर्यावर्तन। ये नर्क में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग कलयुग के बहुत लोग होंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि घर पे यदि अतिथि आया हो और अतिथि को देखकर वह घर में रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, तो अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होने वाले को भी नर्क में डाला जाता है। अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होने वाले को भी एक नर्क में डाला जाता है। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है और अतिथि तो अतिथि भी बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि कहे आए। आज तो सब लोग सतिथि हो गए हैं, फोन करके पहले से ही कह देते कि हम आ रहे हैं आपके घर पर। परंतु अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, उसे पर्यावर्तन नाम के नरक में डालते हैं। जो माता पिता ब्राह्मण गुरु वेद और शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं, उसे काल सूत्र नामक नरक में डालते हैं। जो लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं, प्रायः हम देखते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं तो कई लोग कहते हैं हम गीता और भागवत को नहीं मानते हैं, तो नहीं मानो तो जाओ अपने घर पर। आप नहीं मानते हो तो उससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। जो शास्त्र की बात नहीं मानता है उसे काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है, और यह नरक में उसे 800 मील ऊपर लेकर जाते हैं, 800 मील की ऊंचाई पे लेकर जाते हैं, और 800 मील की ऊंचाई पे उस व्यक्ति को लेके जाकर बिल्कुल पांव पकड़ लेते हैं, जो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और पांव को पकड़कर सिर के बल 800 मील ऊपर से नीचे गिराया जाता है। उस व्यक्ति को लगता है कि नीचे पानी है, परंतु पानी नहीं, वहां तो कंक्रीट से भी कड़क जमीन होती है। 800 मील से वह नीचे गिरता है, गिरते ही उसके हाथ पांव सब कुछ अलग हो जाते हैं, हाय हाय करता है, चिल्लाता है, खून निकल जाता है, पस निकलता है, दुखी होता है। परंतु कुछ देर तक वह दुखी रहता है, फिर से उसका शरीर जॉइंट हो जाता है, फिर से उसे ऊपर लेकर जाते हैं। वैसे हजारों हजारों बार उसे गिराया जाता है जो शास्त्र को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, जो शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भारत भूमि तहले मनुष्य जन्म जार, भारत जैसे पवित्र भूमि पर जन्म लेकर भजन नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को वैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। यहां भी वैतरणी नदी नाम दी जाता है, लेकिन वैतरणी वास्तव में नरक में है। एक ऐसी नदी है जिस नदी वह नदी मल मूत्र हड्डी मज्जा चर्बी उल्टी वॉमिट से बनी हुई है। और जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भक्ति नहीं करते हैं, उसे ऐसी नदी में हजारों हजारों सालों तक रखा जाता है। तत्पश्चात जो लोग केवल धन कमाने के लिए ही पड़े रहते हैं, ये जीवन मिला है भजन करने के लिए, और भजन करने के लिए शरीर की बहुत आवश्यकता है, और शरीर टिकाने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता हूं कमाना नहीं चाहिए, परंतु कमाना उतना चाहिए जब तक हमारा शरीर टिक जाए, कपड़े मिल जाए, रहने के लिए घर बन जाए। कुछ लोग के पास ये सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि असंतुष्ट है, संतोष नहीं है, इसलिए रात दिन धन के पीछे पड़े रहते हैं। वह यह नहीं जानते हैं कि धन कमाने के लिए जीवन मिला है कि भजन करने के लिए। तो जो लोग अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को छोड़कर केवल धन कमाने में पड़े रहते हैं, उसे सूचीमुख नामक नरक में डाला जाता है। और इस नरक में हजारों हजारों दर्जी बैठे होते हैं। जैसे दर्जी सुई से कपड़ा, धागे से कपड़ा सीते हैं, वैसे केवल धन कमाने वाले व्यक्ति के शरीर को वे सुई डाल डाल कर पूरे शरीर को सी लेते हैं, फिर से सब लोग निकाल देते हैं, फिर से सुई से धागे से उसको सीते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बहुत नरक है, समय बहुत कम है। 13 नरक गिनाए, में केवल नाम ले लेता हूं। अंध तामस्री रौरव महारौरव असी त्रवन सुकर मुख ब्रज कंटक शालमली पुयोद प्राणरोध वैशस लाला वक्ष शार करदम रक्षोगण भोजन शूल पोत्र दंड शुक अवट निरोधन। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी ने किया और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं एवं विद्या नरका यमालये शंति सतस्य सहस्रश तेषु। एवं इस प्रकार अपराधी जीव को पापी जीव को इस नरक में शंति सतस्य सहस्रश हजारों हजारों वर्षों तक रखा जाता है। हजारों हजारों वर्ष तक यहाँ पर इस नरक में रखा जाता है। सर्वे सूच सर्व एव धर्म वर्ति तो ये केचित एत उदिता अनुदिता है। ये परीक्षित, वैसे तो नरक असंख्य है, नरकों का प्रमाण असंख्य है, परंतु उस असंख्य असंख्य नरकों में से केवल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति जैसा जैसा पाप करता है उसे उतनी उतनी सजा मिलती है, उतना उसे दंडित किया जाता है। जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक का वर्णन किए तो इस नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए, कंपित कंपायमान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। महाराज परीक्षित का मुंह सूख गया, ध्रुजारी ले ली परीक्षित महाराज ने और कंपित होकर सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं हे सुखदेव गोस्वामी, अब ये नरक का वर्णन बंद करो, अब मुझे यह बताओ अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न इयात तन्मे व्याख्या तुम अर्हसी। ये नरक के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे यह बताओ कि संसार के लोगों को इस नरक से जाने से कैसे बचाया जाए। हे भगवान अधुना इह महाभाग, हे महाभाग अब ये बताने की आवश्यकता है कि संसार के लोगों को नरक से कैसे मुक्त किया जाए। परीक्षित महाराज उन जीवों के लिए चिंतित है जो अपने जीवन में पाप करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज जान गए सुखदेव गोस्वामी के इतने प्रवचन से, चाहे हम और आप समझे या न समझे, परीक्षित महाराज समझ गए इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप न किया। और परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे, पूरे भूमंडल के लिए विचार कर रहे थे। परीक्षित महाराज समझ गए कि जीवन में रहने वाला, गृहस्थ में रहने वाला गृह मेदी निश्चित ही पाप करता है। कुछ लोग न चाहते हुए पाप करते हैं, कुछ कुछ लोगों को पाप नहीं करना चाहते हैं, जो पाप नहीं करना चाहते हैं उससे भी पाप हो जाता है। 5 प्रकार के पाप ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी होते हैं, जैसे पानी भरने में बहुत जीव की हत्या होती है, झाड़ू मारने में बहुत जीव की हत्या होती है, भोजन बनाने में जब भोजन की अग्नि चलती है तो उसमें भी बहुत जीव मरते हैं, बर्तन घिसने में भी बहुत जीव मर जाते हैं, और गांव में जब मसाला पीसते हैं तब भी बहुत जीव मरते रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के पाप न चाहते हुए भी मजबूर होकर करना ही पड़ता है, करते ही है। ये तो ठीक है, ऐसे ये पाप तो न चाहते हुए हो रहे हैं, परंतु संसार में आज प्रायः लोग ऐसे हैं जो रच रच कर पाप कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है करने की, लेकिन फिर भी नॉनवेज के होटल में जाएंगे और खाएंगे, मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे। कोई जुआ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित ने सोच लिया कि संसार में सब लोग पाप करते हैं, यदि वास्तव में पाप करने वाले को नरक मिलता है तो इस संसार में सब लोग नरक में ही जाएंगे, वैकुंठ में तो बहुत कम लोग रहेंगे। तो महाराज परीक्षित का हृदय उन जीवों के लिए द्रवित हो गया जो लोग पाप करते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, और भक्तों का स्वभाव होता है पर दुखे दुखी। एक कृष्ण का भक्त दूसरे के दुख को देख नहीं सकता है, और महाराज परीक्षित देख लिए सब लोग दुखी होने वाले हैं, भले अभी मौज कर रहे हैं, अभी मजा कर रहे हैं ये सब पाप करके, परंतु एक दिन सब लोग इस नरक में जाएंगे। महाराज परीक्षित कांप गए अपने भक्तों के ऊपर, अपनी प्रजा को दुखी देखकर, भविष्य देखकर, क्योंकि भक्तों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत नरम होता है, दूसरे के दुख को देखकर वह द्रवित हो जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय, साधुओं का, भक्तों का हृदय नवनीत ताजे मक्खन के समान होता है। जैसे ताजा मक्खन बहुत नरम होता है, वैसे ही भक्तों का, संतों का हृदय होता है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि कहा कविन पर कह ही न जाना। कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, परंतु संतों का हृदय मक्खन से भी नरम होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब पिघलता है, परंतु संत तो दूसरों को गर्म देखकर, दूसरों के दुख को देखकर वह जलने, वह दुखी होता है, पिघल जाता है। संत का हृदय बहुत कृपालु होता है। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते सूर्य देव को जब जल अर्पण करने गए तो उसी वक्त उस संत के हाथ में एक बिच्छू आ गया। जैसे ही उस संत के हाथ में बिच्छू बेचारा किनारे पर चल रहा था, चलते चलते उस नदी में डूब गया। तो संत के हाथ में वो बिच्छू आया तो उस बिच्छू को लेकर किनारे पर छोड़ने के लिए गए, परंतु बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। वो बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया, संत कांप गए, क्योंकि बिच्छू का डंक बहुत दुरू होता है। संत कांप गए, उसके हाथ से बिच्छू छूट गया, पानी में गिर गया। जैसे ही पानी में गिरा तो संत फिर से उस बिच्छू को ढूंढने लगे, उठाने लगे। दूसरी बार उस बिच्छू को हाथ में लिया और लेकर किनारे पर आ रहे थे तो बिच्छू ने दूसरी बार डंक मारा, दूसरी बार संत ने उठाया। इस प्रकार तीसरी बार उठाने गए तो रास्ते से दो तीन लोग निकले और कहा कि हमने तो सुना है साधु लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये आप क्या कर रहे हो? ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो उसे छोड़ो, क्यों आप रखते हो? बिच्छू का स्वभाव ही है। तब उस संत ने इतना ही कहा कि ये शूद्र, ये साधारण जीव, ये साधारण प्राणी यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं संत मेरा स्वभाव कैसे छोड़ू? ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है डूबे हुए व्यक्ति को किनारे पर लाना। ये बिच्छू अपना स्वभाव में स्थित है और मुझे अपने स्वभाव में रहना चाहिए। ऐसा ही स्वभाव महाराज परीक्षित का था। महाराज परीक्षित को ये क्या आवश्यकता थी? हे महाभाग, हे भगवान, नरक में जाने से जीव कैसे बच सके यह कथा सुनाइए। परीक्षित को क्या आवश्यकता थी? कल आपने कथा सुनी, सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, राजन तुम भगवान के धाम में जाओगे, सर्टिफिकेट मैं देता हूं। परीक्षित महाराज तो निश्चित भगवान के धाम में जाने वाले थे। ये प्रश्न महाराज परीक्षित हमारे लिए पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं हे महाभाग। महाभाग का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं भागो विवेकात्मको बुद्धि विशेष। सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कहा जा रहा है। महाभाग का अर्थ है कि विवेक, जिसमें, जिसकी बुद्धि में विवेक हो, विवेक वाली बुद्धि हो, उसे महाभाग कहते हैं। और विवेक किसे कहते हैं? विवेको ही हेयम उपाधेयम, जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में संपूर्ण जानता है, उसे विवेक कहा जाता है। जिस व्यक्ति में यह विवेक आ जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे महाभाग कहा जाता है। और दूसरे शब्द में महाभाग का अर्थ होता है महाभाग्यवान। और भाग्यवान किसे कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु की भाषा में ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कौन है भाग्यवान? गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। जिसके हृदय में भक्ति का बीज आ जाता है वह व्यक्ति भाग्यवान है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कह रहे हैं। हे महाभाग, हे परम भाग्यशाली। वास्तव में संसार में हम लोग कहते हैं आप भाग्यशाली हो, आप धनी हो, भाग्यशाली हो। वास्तविक भाग्यशाली तो वह है जिसके पास भक्ति है। भजन करने वाला भाग्यशाली और भजन नहीं करने वाला दुर्भाग्यशाली। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछे कि नरक में इस प्रकार से पाप करने वाले नरक में जाएंगे, परंतु यदि किसी से पाप हो गया हो तो पाप जिसको हो गया हो वह व्यक्ति नरक में जाने से बचने के लिए कुछ उपाय है आपके पास कि वह उपाय करके नरक में जाने से बच सके? तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को जानकर परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं, न चेदि हेवा पचितिम यथामंस कृतस्य कुरियान मनुक्त पाणि भी ध्रुवम सवे पेति नरकानु पेति ये कीर्तितामे भवतस्मिग्न यातना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, नरक में जाने से व्यक्ति बच सकता है, चाहे किसी भी व्यक्ति से कितना भी पाप क्यों न हुआ हो, यदि जो मैं कहता हूं वह कार्य कर ले तो वह नरक में जाने से बच सकता है, डरिए मत। उपाय आ रहा है तो उपाय बता रहे हैं, मन उक्ति और पानी भी। मन का अर्थ तो आप जानते हैं, हमारे शरीर में 10 है वस्तु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा, 5 स्थूल 5 सूक्ष्म, और उस सूक्ष्म वस्तु में एक मन है। मन एक ऐसी वस्तु है जिसमें विचार बहते रहते हैं, हम जो भी सोचते हैं सब कुछ मन में सोचते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि मन वाणी और इंद्रियों से जिस व्यक्ति ने जितना पाप किया है उतना प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए। यदि नरक में जाने से बचते हो तो इसी जन्म में अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और कैसे प्रायश्चित, कौन से पापों का? तो कहते हैं मन से किए गए पापों का प्रायश्चित करो। अब मन से हम लोग पाप करते हैं, मन से पाप का अर्थ होता है मन ही मन में किसी का अनिष्ट सोचना, मन ही मन में सोचना कि इसका बुरा हो जाए, ये गिर जाए, ये मर जाए, मन से गाली देना, ये मन से पाप है। मन से किसी का बुरा देखना सोचना, तो मन से जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहिए। परंतु कलयुग के जीवों के लिए एक बेनिफिट यह है, कलयुग में देखो कलेर दोषो निधे राजन, ये कलयुग में बहुत बहुत दोष है, परंतु परीक्षित महाराज ने कलयुग में बहुत गुण देखा, 2-3 गुण देखा, इसलिए कलयुग को आने दिया, स्वागत किया, आइए। नहीं तो परीक्षित महाराज में ये शक्ति थी कि कलयुग आए ही नहीं। परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग में मन से किए गए पाप को माफी है, कलयुग में जो अपने मन से पाप करते हैं उसे नरक में नहीं भेजा जाएगा। और बेनिफिट क्या है, कलयुग में यदि मन से अच्छे काम अच्छा सी चीज सोचते हो तो उसका फल मिलेगा, मन की पॉजिटिव साइड नहीं देखी जाएगी, मन की नेगेटिव साइड नहीं देखी जाएगी। मन से बुरा सोचते हो तो भगवान उसे नहीं देखेंगे, यदि मन से अच्छा सोचते हो तो उसका पूरा फल मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप मन ही मन सोचो कि मैं ब्राह्मणों को दान करा रहा हूं, मुझे ब्राह्मणों को दान देना है, और मन ही मन ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, मन ही मन किसी को दान दिया, तो ये मन में जो कार्य करते हैं उसका फल मिलता है। कोई व्यक्ति अपने हाथ से कमा करके किसी को 1,000 रुपया दान करे, और कोई व्यक्ति यदि मन से ही किसी को 1,000 रुपया दान करे, दोनों का फल बराबर है, शास्त्र कहता है। कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करके 1,000 रुपया किसी को दान करे, और कोई मन से केवल 1,000 रुपया किसी को दान करे, दोनों का फल बराबर है। परंतु कलयुग में दुर्भाग्यशाली जीव मन से भी दान नहीं कर सकते, मन में भी किसी का कैसे ले लूं सोचते हैं, किसी का कैसे उठा लूं, कौन मन में अच्छा सोचता है। तो मन से जो पाप है वह क्षमा है, और मन से जो अच्छे कार्य करते हैं उसका फल हमें संपूर्ण मिलता है मन। दूसरा पाप होता है उक्ति, उक्ति अर्थात वाणी, ये वाणी से बहुत पाप होता है, ये जिह्वा। आचार्य कहते हैं कि तार मध्य जिह्वा यति लोभ मय सुदरमति, हमारे शरीर में एक जिह्वा ऐसी चीज है थोड़ी भी यदि हिल जाए तो ये शरीर को मार खाना पड़ता है। यदि ट्रेन में खड़े हो और ये जिह्वा थोड़ी भी हिल जाए, मान लीजिए जिह्वा से एक गाली निकल जाए और कोई पहलवान खड़ा हो जीवा हिली परंतु जीवा को हो कुछ नहीं होगा, होगा शरीर को बाद में। जीवा उक्ति वाणी से पाप होता है, वाणी से किसी को गाली दे देना, वाणी से किसी को दुखी कर देना, ये सब वाणी से पाप है। और भी वाणी से ज्यादा ज्यादा पाप है, गलत गलत गाने गाना न्यूज़पेपर के द्वारा, पत्र के द्वारा सब जगह पर यह विज्ञापन करना, ये सब वाणी का पाप है। और पानी भी, पानी का अर्थ होता है इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा पाप होता है, हमारे शरीर के द्वारा अनेक अनेक पाप होते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपचितिम, मन उक्ति और पानी ये तीनों चीज से जो पाप हुए हैं उसे अपचितिम उसका प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने में इह एव देर मत करो, जल्दी बने उतना जल्दी विपत्ति आने से पहले यह प्रायश्चित कर लीजिए, क्योंकि विपत्ति बहुत जल्दी आने वाली है। और यदि प्रायश्चित नहीं करते हो तो कहते हैं ध्रुवम, निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा। प्रायश्चित नहीं करते हो तो नरक में जाने का, जाने से बचने का नो चांस, कोई चांस नहीं। नरक में जाने से यदि बचना है तो प्रायश्चित करना होगा, इह एव इसी ही जन्म में। और आगे इसी बात को कहते हैं तस्मात् पुरेवा शिव पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना दोषस्य दष्टा गुरु लाघवम यथा विषक चिकित्सेन रुझान निदानवित। अपने जीवन में जितने पाप किए हैं, यदि छोटे पाप किए हैं तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित, लेकिन यह जानकर अपने मन से प्रायश्चित मत करो। इस संसार में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पाप करते हैं और पाप करने के बाद कुछ उसे अफसोस भी होता है, प्रायश्चित भी करते हैं, परंतु अपने मन से, अपने मन से कुछ व्रत रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रायश्चित भी करना चाहिए तो वेदों में जो लिखा गया है उसके अनुसार, हमारे शास्त्रों में किस व्यक्ति को क्या प्रायश्चित करना चाहिए बिल्कुल क्लियर लिखा है। जैसे मनु संहिता, मनु महाराज ने एक संहिता लिखी है तो मनु महाराज ने बिल्कुल क्लियर किया है। मान लीजिए यदि किसी ने चोरी की है तो चोरी करने वाले व्यक्ति को दान करना चाहिए। मान लीजिए चोरी हो गई और प्रवचन सुनने के बाद आपको हुआ कि चोरी हो गई है, अब क्या करूं, तो शास्त्र में बिल्कुल क्लियर लिखा है प्रायश्चित करना है तो एक काम करो, चोरी करने वाला दान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्रह्म भोजन करे और स्वयं उपवास रखे, इससे वो प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित करो परंतु शास्त्र के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं। जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया और बीमार होकर वे स्वयं अपनी बुद्धि से मेडिकल में जाता है और अपनी बुद्धि से कोई दवा उठाकर पी लेता है तो वह ठीक नहीं हुआ होगा, उल्टा बुखार बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार उसे यदि ठीक होना है तो एक डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर भी दवाई ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, परंतु डॉक्टर जानते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी दवाई की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमसे पाप हो चुके हैं, प्रायश्चित करना है तो किसी गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्र के निर्देशन के अनुसार हमारा पाप कैसा है, बड़ा है तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा है तो छोटा प्रायश्चित करना चाहिए। तो परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर ले तो नरक में जाने से बच सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु आपने जो उत्तर दिया ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपने तो ताली बजा दी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि सुखदेव गोस्वामी ये ठीक नहीं है। दृष्ट शुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनोहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम अथोकतम। बहुत सुंदर। अब देखिए हमारी बुद्धि नहीं चली, परीक्षित महाराज परम बुद्धिमान थे। मैंने कल कहा भारत जो ज्ञान में ही रत रहने वाले थे। कहते हैं दृष्ट शुताभ्याम यत पापम, इस संसार में हजारों हजारों लोग प्रायश्चित करते हैं और प्रायश्चित क्या, दृष्ट देखते हैं, अर्थात वह देखते हैं कि गलत काम करने वाले को सजा मिल रही है, दुखी हो रहा है। श्रुताभ्याम शास्त्र के द्वारा सुनते भी है कि यदि हम गलत काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। जैसे आज सब लोग ने सुना कि ये गलत काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां से निकल कर जैसे थे वैसे एज इट इज, जैसे भगवत गीता एज इट इज वैसे हम भी एज इट इज है। तो दृष्ट श्रुताभ्याम इस संसार में प्रभुपाद जी तीन प्रकार के मनुष्य का वर्णन करते हैं। पहली कैटेगरी का व्यक्ति वो है जो देखकर और सुनकर समझ लेता है कि गलत काम नहीं करने चाहिए। इतने संसार में कैंसर हो रहे हैं, इतने मर रहे हैं, और शास्त्र में लिखा है नरक में जाएंगे, तो भौतिक जगत में भी दुखी हैं और मरने के बाद भी दुखी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। देखकर और सुनकर समझ जाता है पाप नहीं करना चाहिए। ये पहली कैटेगरी का व्यक्ति है, ए ग्रेड का व्यक्ति। बी ग्रेड का व्यक्ति कैसा है? जो देखता है, सुनता है, फिर भी नहीं समझता है, परंतु देखता है, सुनता है, फिर भी गलत काम करता है, और गलत काम करने के बाद उसे दंड मिलता है, और दंड मिलने के बाद समझ जाता है ठीक है अब नहीं करना चाहिए। परंतु तीसरी कैटेगरी का थर्ड क्लास का व्यक्ति वो है जो देखता है, सुनता है, समझाया जाता है, दंडित होता है, लेकिन फिर भी वही पाप में पड़े रहता है। ये थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति है। सुखदेव गोस्वामी 99.99% हमारे भारत में ऐसे लोग है, प्रायश्चित करते हैं, परंतु प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप में लग जाते हैं। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मनी कुंजर शोचवत। संसार में प्राय सब लोग अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। पाप हो गया है तो उसके लिए अफसोस करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। जैसे किसी से पाप हो गया तो हरिद्वार चले जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करके जल पानी छोड़कर आते हैं कि अब बंबई जाकर हम मावा नहीं खाएंगे, बंबई जाकर गुटखा नहीं खाएंगे। कुछ लोग अमरनाथ जाते हैं, वहां कुछ व्रत लेकर आते हैं कि बंबई जाकर चाय कॉफी नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे ही धाम से बंबई में आते हैं तो वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। इसमें से कई लोगों ने सिगरेट छोड़ दी होगी, फेंक दी होगी, आज से हम ये नहीं करेंगे, वह नहीं करेंगे, लेकिन फिर से कुछ एक दो महीने के बाद पहले से ज्यादा पीने लगे। तो कहते हैं लोग प्रायश्चित करते हैं अपने आप को। प्रायश्चित का अर्थ होता है पश्चाताप, पश्च माने बाद में, ताप माने जलाना अपने शरीर को, बाद में जान बूझ कर तपस्या देना, दुखी करना, इसे प्रायश्चित कहते हैं। तो अपने आप को, अपने आप का प्रायश्चित करते हैं, परंतु प्रायश्चित करने के बाद भी वो पाप करते ही रहते हैं। तो परीक्षित महाराज की भाषा में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रायः पापम समाख्यातम चित्तम तस्य विसर्जनम। हे सुखदेव गोस्वामी, प्रायश्चित का अर्थ होता है, प्राय का अर्थ होता है पाप, और चित का अर्थ होता है विसर्जनम। प्रायश्चित का अर्थ होता है संपूर्ण पाप का नाश हो जाना, ये प्रायश्चित का अर्थ है। परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप में लगते हैं। तो प्रायश्चित करना पाप करना, प्रायश्चित पहले पाप करना फिर बाद में उसका प्रायश्चित कर लेना, फिर से पाप करना, फिर से प्रायश्चित करना, पाप प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित, ये तो हाथी के स्नान के समान है। मन ये कुंजर शौचवत, हाथी का स्नान आप सब लोग जानते होंगे। इस संसार में 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में सबसे अच्छा स्नान हाथी का स्नान होता है। हाथी जब स्नान करने जाता है तो नदी सरोवर में घंटों भर स्नान करता है, और हमें तो स्नान करने के लिए शोवर लगाना पड़ता है। हाथी को तो भगवान ने अपने सूंड में ही दे दिया है, पानी उठा उठा कर डालता है। 3-4-5 घंटे तक हाथी स्नान करता रहता है, अपने शरीर को साफ करता है, लेकिन वह हाथी 5 घंटे के बाद उस सरोवर से बाहर आकर सरोवर के किनारे जैसे बाहर आता है तो किनारे की मट्टी को अपने सिर पर लगा देता है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि यदि मट्टी को अपने शरीर पर डालना ही था तो स्नान क्यों किया? यदि पाप ही करना है तो प्रायश्चित का क्या फायदा? यदि जीवन में पाप ही करते रहने हैं तो प्रायश्चित करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, ये प्रायश्चित जो आपने उपाय बताया नरक में जाने से बचने के लिए, ये ठीक नहीं लग रहा है। कोई ठीक उपाय बताइए, क्योंकि हम भी सुनने वाले भी श्रेष्ठ हैं, सुनाने वाले भी श्रेष्ठ हैं। जब परीक्षित महाराज ने ऐसा तर्क दिया, सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। श्री बादरायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धन्य है राजन, मैं परीक्षा ले रहा था कि आप ठीक से सुन रहे हो या नहीं, आप बुद्धि से सुन रहे हो या नहीं। वास्तव में आप उत्तीर्ण हुए। परीक्षित महाराज वास्तव में धन्य है, उन्होंने यह तर्क दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, आप सत्य कह रहे हो, कर्मणा कर्म निहारो न हात्यंत कीष्यते। ये सत्य बात है, पाप को प्रायश्चित के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। कुछ लोग पाप कर देते हैं और पाप करने के बाद फिर पुण्य करते हैं ताकि हमारा पाप कट जाए। तो कर्मणा कर्म निहारो न आत्यंतिक इष्यते। कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मल से मल को कभी नहीं धोया जा सकता है। तो कुछ लोग इस संसार में पाप करते हैं और बाद में सोचते हैं कि पुण्य करेंगे तो ये पाप मिट जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र का सिद्धांत है, जो पाप किया है उसे भी उसे ही भोगतना पड़ेगा और जो पुण्य किया है वह भी भोगतना पड़ेगा। प्राय एक दृष्टांत दिया जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किया और पाप के परिणाम वश वो किसी के वहां कुत्ता बना। पाप के कारण वह दूसरे जन्म में कुत्ता बना, परंतु उस व्यक्ति ने पाप के साथ बहुत पुण्य भी किया था तो क्या होगा? तो कुत्ता तो बनेगा ही, लेकिन किसी अमीर व्यक्ति के घर पर कुत्ता बनेगा। मर्सिडीज में घूमेगा, अच्छे साबुन से नहाएगा और अच्छा भोजन करेगा। तो पाप भी भोगतना पड़ता है और पुण्य भी साथ में भोगतना पड़ता है। कर्म से कर्म कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज फिर से पूछे, अच्छा पाप काटने के लिए प्रायश्चित विधि ठीक नहीं है, तो फिर शास्त्र में क्यों लिखा गया है प्रायश्चित? मनु महाराज, पराशर मुनि, ये सब ने प्रायश्चित करने के लिए बहुत बहुत विधि विधान दिए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रायश्चित के उपाय वेदों में बताए हैं, ये अविद्वी अधिकारित्वा, ये अज्ञानी लोगों के लिए है। ये जो प्रायश्चित की विधि है, जो भगवान कृष्ण को नहीं समझते हैं, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह विधि है। बाकी जो कृष्ण को जानते हैं, आत्मा को परमात्मा को समझते हैं, उसके लिए तो कोई अलग विधि है। आप देखिए, इस संसार में जो ज्ञानी है वे लोग एक जगह पर बैठकर ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, परंतु जो अज्ञानी है उसे आप कहो कि आपका आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको यहाँ पर एक घंटा बैठना है, वो पांच मिनट भी एक जगह पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन उसे कहो कि यहां से दादर चलकर जाना है तो जाएगा, उसमें उसकी श्रद्धा होगी। तो अज्ञानी लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करेंगे तो ही हमारा पाप का प्रायश्चित होगा। एक जगह पर बैठ कर थोड़ी ना प्रायश्चित हो सकता है, केवल भगवान का नाम लेकर थोड़ी ना प्रायश्चित हो सकता है। तो ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसे अज्ञानी के लिए, चलो कुछ न करे उससे अच्छा प्रायश्चित तो करे। इसलिए पराशर मुनि, मनु महाराज इत्यादि लोगों ने प्रायश्चित की विधि बताई। तो परीक्षित महाराज ने कहा, तो बताइए संसार के लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, धैर्य रखिए। नरक में जाने से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है विमर्शनम, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान हो जाना, यह सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि राजन, नाशनत पथ्य मेवानम व्याधो अभिभवन्ति ही। इस संसार में अज्ञान के कारण सब लोग पाप करते हैं। दृष्टांत देते हैं, जैसे भोजन, मान लीजिए भोजन आपके सामने है और उस भोजन में विष मिला दिया है, और यदि आप में अज्ञान है, आप नहीं जानते हो, तो वो विष वाले भोजन को आप खा लोगे और मर जाओगे। परंतु यदि ज्ञान हो जाए कि इसमें विष है तो व्यक्ति वो भोजन खाएगा ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि ये कार्य करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो बच जाएंगे, यह ज्ञान हो जाए तो वह नरक में जाने से बच सकता है। एवं नियम कृदाजन शनि क्षेमाय कल्पते। ज्ञान होना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करेंगे। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु ये भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले प्रायश्चित बताए, अब कह रहे हैं ज्ञान के ज्ञान प्राप्त करो। प्रभु इस संसार में सबको ज्ञान है, ज्ञान सबके पास है, परंतु ज्ञान टिकता नहीं है। इस संसार में सब लोग, सभी सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, उनके सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पीते हैं। ज्ञान है परंतु टिकता नहीं है। तो ज्ञान टिकाने के लिए कोई उपाय आपके पास है? देखिए, हम सबका प्रश्न है। हम कभी कभी प्रवचन करते हैं तो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रभु आपको इतना याद कैसे रहता है? प्राय सबका ये प्रश्न है, ये सब याद कैसे रहता है? परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं, ये सब याद कैसे रहेगा, ये ज्ञान टिकेगा कैसे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तपसा तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन च। परीक्षित, ज्ञान को यदि टिकाना है, प्रायश्चित यदि नरक में जाने से बचना है, तो उपाय सुनो, तपस्या करनी चाहिए। तपसा, तपस्या का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भोगों से दूर रखना। इस संसार में बहुत सारे भोग हैं, ये सभी भोगों से अपनी इंद्रियों को दूर रखना, इसे तपस्या कहते हैं। ब्रह्मचर्येण, दूसरा गिनते रहिए, सुखदेव गोस्वामी दूसरी चीज कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये सब का यदि पालन करोगे तब जाकर आप में ज्ञान टिकेगा, नहीं तो वो बह जाएगा। तो तपस्या करो ब्रह्मचर्येण। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने वीर्य की रक्षा। यदि कोई अपने वीर्य की रक्षा करता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसकी बुद्धि ब्रेन बढ़ती है, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, उसका मनोबल बढ़ता है। हमारे भारत में एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो गए जिसका नाम था विवेकानंद। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और उसके ब्रह्मचर्य व्रत से विवेकानंद ने यूरोप में, विदेश में भारत की भूमिका और भगवत गीता का डंका बजा दिया। तो ब्रह्मचर्य, प्रभुपाद जी ब्रह्मचर्य का अर्थ देते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि कभी भी किसी भी स्त्री को देखना नहीं, कभी भी किसी की स्त्री के बारे में सोचना नहीं, कभी भी किसी की स्त्री की बात को नहीं करनी चाहिए। ये सब ब्रह्मचारी के गुण है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और शमेन, शम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों का शमन करना। शम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। अपनी कई सारी इंद्रियां हैं और उसमें मुख्य है मन। शम का अर्थ होता है अपने मन को वश में रखना। दमे नच, दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को, हाथ पांव इत्यादि इंद्रियों को वश में रखना। त्यागे न, त्याग का अर्थ होता है दान करना। सत्य, सत्य का अर्थ होता है केवल सत्य भाषण करना और केवल शास्त्र को ही सुनना। शोचाभ्याम का अर्थ होता है पवित्र रहना, अंदर से भी पवित्र और अंतर बहिर्वस्तम शुचि, अंदर और बाहर से पवित्र रहना। और यम, यम का पालन करना। यम का अर्थ होता है 12 यम है और 12 नियम है। तो ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमेन च दमेन च, त्याग, सत्य, स्वचाभ्याम, यम और नियम, ये सब का पालन यदि कोई करे तब उसमें ज्ञान टिक सकता है, और जब ज्ञान टिक जाए तो व्यक्ति नरक में जाने से बच सकता है। सुखदेव गोस्वामी इस बात को आगे कहते हैं, देह वाग बुद्धि जम धीरा धर्मज्ञा शुद्ध ज्ञानविता शिपत्यगम महदपि वेणु गुल्म इवानल। यदि कोई तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, यदि कोई अपनी मन को कंट्रोल में रखता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, त्याग दान करता है, सत्य भाषण करता है, पवित्र रहता है, यम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, यह सब करके व्यक्ति अपने पाप को ऐसे जलाकर भस्म कर देगा जैसे जंगल में दावा अग्नि से बांस के झुरमुट जलकर भस्म हो जाते हैं। तपस्या इत्यादि यह कार्य करने से हमारे जीवन के पाप ऐसे जल जाते हैं, ऐसे जलकर राख हो जाते हैं जैसे जंगल में दावा अग्नि से बांस के झुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। तो परीक्षित यह करो, इससे सभी प्रकार के पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे जैसे दावा अग्नि बांस के झुरमुट को जला देती है। यह उपाय सुखदेव गोस्वामी ने दिया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि स्वामी, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने तो ये बहुत बड़ा और लंबा उपाय बताया। प्रभु ये कौन, आपने कहा कि तपस्या करो, ये तपस्या कौन कर सकता है कलयुग में? एक दिन भूखा नहीं रह सकता, एक महीना कैसे रह सकता है? तपस्या का अर्थ होता है, कुछ कुछ लोग दिसंबर के महीने में ठंडे ठंडे गंगा जल में महीनों भर तक खड़े रहते हैं, जिसमें हाथ डालो तो भी हाथ बर्फ बन जाता है। तपस्या का अर्थ होता है कि गर्मी की ऋतु में मई महीने में व्यक्ति पंचांगनी तापते हैं, उसके बीच में खड़े रहते हैं, नीचे से पंचांगनी की ताप, ऊपर से सूर्य की गर्मी, और अंदर से भूखे रहते हैं, अंदर से भूख की गर्मी, और उसमें महीनों भर खड़े रहते हैं। ऐसी तपस्या कौन कर सकता है? महाराज परीक्षित कहे, प्रभु ये इम्पॉसिबल है। आपने जो बताया उपाय, ये तो नरक में जाना जाने के लिए बचे, ये आपने उपाय बताया, ये तो यहीं पर नरक हो जाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है इसे। और आप कहते हो कि यह सब करने से हमारे जीवन के पाप वैसे जलकर भस्म हो जाएंगे जैसे दावा अग्नि से बांस के झुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। तो प्रभु मैं आपको एक तर्क दूं, बारिश होती, वर्षा जंगल में दावा अग्नि लगती है और दावा अग्नि के द्वारा बांस के झुरमुट जल जाते हैं, ये सत्य बात है। परंतु प्रभु जैसे ही बारिश आती है और बारिश की पानी जब बांस के झुरमुट जल जाते हैं परंतु उसके मूल नहीं जलते हैं, तो जैसे ही बारिश का पानी बांस के झुरमुट के मूल में जाता है तो फिर से बांस उगने लगता है। प्रभु आपने जो उपाय बताया, इस उपाय से पाप नष्ट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपने तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये जो भी उपाय बताया, इससे पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने की जो इच्छा है, वह नष्ट नहीं हो सकती। जैसे दावा अग्नि से बांस जल जाते हैं परंतु बांस का मूल नहीं जलता है, तो जब तक मूल नहीं जलता है तब तक व्यक्ति पाप करना बंद नहीं करता है। जैसे हमारे इस देश में एक से एक ऋषि मुनि हो गए और यहां पर तपस्या करने के लिए कह रहे हैं, तो मानो परीक्षित महाराज कहे तपस्या तो शौबरी जी ने भी की थी। और कैसी तपस्या? भूमि पर तपस्या नहीं, भूमि पे सब लोग डिस्टर्ब न करें इसलिए पानी में चले गए, और पानी में जाकर शौबरी ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और 60,000 वर्ष तक तपस्या करते करते एक बार उन्होंने पानी में एक मछली का मैथुन देखा और वहां से बाहर आए, सोचा विवाह मुझे भी करना है, और एक नहीं 50 पत्नियों के साथ विवाह किए। तपस्या करने वालों का यह हाल है। प्रभु आप कह रहे हो तपस्या करो, तपस्या करने से पाप नष्ट हो जाए परंतु इच्छा नष्ट नहीं होती। जैसे विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे परंतु मेनका ने उसे उसकी तपस्या भंग करवा दी। तो तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सबसे पाप नष्ट हो सकते हैं, पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं हो सकती। प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन के पाप भी नष्ट हो जाएंगे और जिसे पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तक पाप करने की इच्छा नष्ट नहीं होगी तब तक व्यक्ति पाप करना बंद नहीं करेगा। तो ऐसा उपाय बताइए जिसे पाप भी नष्ट हो जाए, पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कोई इजी सरल रास्ता बताओ, ये सब कोई करेगा नहीं प्रभु। तो तीन डिमांड की परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा उपाय दो जिससे सभी पाप कट जाए, ऐसा उपाय दो जिसे पाप करने की जो वासना है, पाप करने की वृत्ति है, जो मूल जड़ है, यह भी नष्ट हो जाए, और ऐसा उपाय दो कि जो थोड़ा सरल भी हो, आसान हो। तब सुखदेव गोस्वामी ये उपाय कल बताएंगे, अंतिम उपाय। हरे कृष्णा हरे तो अंतिम उपाय नरक से बचने के लिए सरल और एक ही उपाय एक ही काम में तीनों काम हो जाए, यदि ये उपाय जानना है तो कल यहाँ पर पधारिए और इस उपाय को जानिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। हरे कृष्ण।